मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں بظاہر ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ پہلی آیت کا مطلب ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، دوسری آیت ہے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی لہذا آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، آپ کا دشمن ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کو کیا ہو گیا میرے بھائی، آواز ہی نہیں آ رہی؟ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو، اور دوسری آیت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اصل میں پورا اسلام میں داخل کیسے ہوگا انسان؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بائی بون مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو کچھ رسومات کی حد تک تو سب ہی اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اس کا وہ کدھر ہے؟ کچھ رسومات کی حد تک تو سب لوگ ہی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اس سے ایک اسٹیپ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک خوف ہے لاشعور میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ پروفیشنل مولانا بن گیا، یہ تو لوگ اسلام کی طرف نسبت کو تو پسند کر لیتے ہیں جو مسلم ہیں، لیکن ادھر دے دیں، لیکن انگلیاں اٹھیں کہ یہ پروفیشنل مسلم ہے، یہ تو مولانا لگ رہا ہے، یہ تو مذہب پریکٹسنگ مسلمان ہے، اس طانے کو لوگ جو ہمارا ایک لبرل طبقہ ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ دنیا میں برداشت نہیں کر رہے آخرت میں اس کی طرف نسبت کو پھر کیسے پسند کرو گے آپ؟ یعنی آپ یہ دنیا میں نہیں چاہتے کہ میری طرف لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ یہ پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے مولانا ٹائپ کا آدمی۔ ایک تو مولانا ہوتے ہیں جو مدرسوں میں ہم جیسے لوگ فارغ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مولانا ٹائپ کے جیسے یہ بیٹھے، آج تو پورے مولانا ہیں میرا خیال، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپی رکھی ہوئی ہے داڑھی ہے، یہ بھی بیٹھے ہوئے بغیر ٹوپی کے لیکن بہرحال داڑھی ہے ان کی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں مولانا ٹائپ کا۔ तो लोग नहीं चाहते कि हम देखने में मौलाना टाइप के लगें। एक जमाना था लोग ये चाहते थे हम लगें देखने में, जब मुसलमानों की हुकूमतें थी, रियासतें थी, इस्लामी खिलाफत थी, तो उस वक्त इज्जत दीनदारों की ज्यादा थी। मैं आप हैरान होंगे कि फुकहाए किराम ने एक मसला बयान किया है माजी में कि दाढ़ी सफेद करना जायज नहीं है। आप हैरान होंगे, दाढ़ी काली की जाती है, सफेद कहां की जाती है? लेकिन उस जमाने में लोग दाढ़ी सफेद कर लेते थे। वजह क्या है? सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत बहुत थी। जो एजेड लोग थे, बूढ़े लोग थे, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा थी। लोग कहते थे ये मैच्योर हैं, इनकी एज बढ़ गई है, इनका तजर्बा ज्यादा, इनका तकवा नेक अमल ज्यादा, तो इनमें मैच्योरिटी पैदा हो गई है। वो मेडिकल साइंस की फील्ड में हो तो भी इज्जत ज्यादा, आलिम दीन हो तो भी इज्जत ज्यादा, कोई हकीम हो तो भी इज्जत ज्यादा, कि ये मैच्योर हो गए हैं, एक बुजुर्गी है इनके अंदर, ये दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी, ये दम करेंगे दमादम हो जाएगा। तो सफेद दाढ़ी वाले की मुस्लिम सोसाइटी में इज्जत इतनी थी कि लोगों ने अपने आप को बुजुर्ग शो करने के लिए दाढ़ियों को क्या करना शुरू कर दिया था, सफेद। तो मैं आपसे इस कर रहा हूं, कल्चर जो है ना, जिसको इज्जतदार समझना शुरू कर दे तो लोग वैसा बनने की कोशिश शुरू कर देते हैं, और कल्चर जिसको कमतर समझना शुरू कर दे लोग उसको कमतर समझना शुरू कर देते हैं। कल्चर बड़ी अजीब चीज है, बाज दफा ये सही लेके जा रहा होता है और बाज दफा ये गलत लेके जा रहा होता है, बाज दफा सही भी ले जा रहा होता है। कल्चर ऐसी अजीब चीज है, आजकल इंग्लिश आना पढ़ा लिखा होने की अलामत समझा जाता है, और बाज दफा उर्दू ना आना नेक होने की अलामत है। कितने हाई प्रोफाइल एजुकेटेड हैं, उर्दू ही नहीं आती, हालांकि पैदा यहां हुए, उर्दू स्पीकिंग में रहे, बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, इनको उर्दू नहीं आती। तो ये तो इसकी अलामत है कि ऊपर से भी खाली है, यानी एक आदमी जिस जबान में रहता है वो तो आई जाती है ना दाएं बाएं से सुन सुन के, वो भी नहीं आ रही, इसका मतलब इसका तो चैम्बर भी खाली है ऊपर से, लेकिन उसको क्या समझा जा रहा है, फखर। आप कितनी उल्टी बात इंग्लिश में कह दें मान लेंगे लोग उसको, यार पढ़ा लिखा आदमी। बहुत से मजहबी स्कॉलर इस चीज को कैश कराते हैं, बात 100% गलत होती है, लेकिन चंद इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करके वो ये भरम देते हैं कि ये एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि वो बात 100% गलत होती है। अच्छा, मैं चूंकि दुनिया में हर तबके से मिलता हूं, मैं ऐसे ऐसे टाइप के लोगों से मिला हूं ना कि आप हैरान हो जाएं कि इस टाइप के भी दुनिया में लोग पाए जाते हैं। मैंने देखा है कि जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ना वो उर्दू में बात करते हैं, ये अक्सर मैंने देखा है। यानी जब उर्दू लोगों में बैठे होंगे, और जिनको बहुत अच्छी नहीं आती वो इंग्लिश में बात की कोशिश करते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत होती है वो बिला वजह दौलत को उड़ाते नहीं है। जो जद्दी पुश्ती मालदार होते हैं, जिसके पास नया नया पैसा आता है वो दौलत शादी ब्याह के मौके पे बहुत ज्यादा उड़ाता है। ये एक इंसान की एक नफ्सियात है, क्योंकि वो उसमें फखर महसूस कर रहा होता है। जो जद्दी पुश्ती मालदार हैं उन्होंने तो दौलत देखी है, उनको शो मारने की जरूरत है नहीं। जो कभी कभी ऊंट लेके आते हैं वो व्लॉग भी बनाते हैं, बच्चों को ऊंट पे बिठा के सवारी, जैसे हम फर्स्ट टाइम लेकर आए ना, अब हर साल अगर लाते रहे फिर थोड़ी बनाएंगे व्लॉग, फिर थोड़ी बच्चों को बिठाएंगे। तो कभी ये वैसे ही शौक के तौर पर होता है, कभी एक ठरक होती है इंसान में शो मारने की। कहते हैं नया नया पैसा आया है, सुना होगा ना, ये इतराना शुरू कर दे कोई आदमी तो क्या कहते हैं, यार पैसा इसके पास नया नया आया है। अच्छा ये जिनको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, पूरी नहीं आती, ये भी देख रहे होते हैं कि सामने वाले को ऐसा ना पूरी आती हो, ये भी खतरा होता है। और एक आदमी ने किसी से कहा ना कि तुझे इंग्लिश आती है, उसने कहा हाँ आती है, उसने कहा फिर उर्दू में ही बात कर, ठीक है ना, फिर उर्दू में ही बात करते हैं। किसी भी जबान का आना ये बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश तो एक बैन अल-अक़वामी जबान है, और इंग्लिश का ना आना मैं समझता हूं इस जमाने में एक ऐब है, ये कोई खुशी या फखर की बात नहीं है। जबानें तो जितनी आ जाए अच्छा है ना, लेकिन हर चीज को उसका हक देना चाहिए, ये बात समझने की है। जो जिसकी जितनी वैल्यू है उसको उसकी वैल्यू से बढ़ाना नहीं चाहिए। जबान आने से एक बैरियर खत्म होता है, एक रुकावट खत्म होती है, आप अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है। इससे ज्यादा नहीं है, इसका इसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बड़े बड़े उलमा देखे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत इल्म दिया, लेकिन वो अपनी बात लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते, उनमें स्पीकिंग पावर नहीं है। तो क्या मतलब वो उलमा बेकार है माज अल्लाह, उनकी इल्मियत से फायदा नहीं उठाया जाएगा। लेकिन जब वो किसी चीज पे रिसर्च लिखते हैं तो वो हक अदा कर देते हैं, उनकी किताबें हैं, उनके तहकीकी मकाले हैं। हिंदुस्तान में उलमा जो गुजरे हैं, बड़े बड़े पाए के उलमा गुजरे हैं, आप इनके तहकीकी मकाले पढ़ें इंसान हैरान हो जाता है। इंग्लिश नहीं आती थी उनको तो लोग उनको आलिम नहीं समझते। मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहिमहुल्लाह ताला गुजरांवाला के, आप उनकी कोई भी किताब उठा के पढ़ लें, पंजाबी स्पीकिंग थे, बातचीत में भी पंजाबी लबो लहजा। हो सकता है कोई उनसे मिले तो कहे कि शायद इनके पास इल्म नहीं है। कई बार दौरे तफसीर मुकम्मल किया उन्होंने, आप उनकी किताबें उठा के देखें इंसान हैरान हो जाता है कि ये एक सफा जो इन्होंने लिखा होगा इसमें महीने लगे होंगे, महीने, इतनी रिसर्च। क्या दुनिया जानती है उनको, सिवाय चंद मजहबी तबके के लोगों के, लोग नहीं जानते उनको। लोगों के जहन में इल्म का एक और ही कॉन्सेप्ट है। उनकी किताबें जरूर पढ़ें, याद रहेगा मौलाना सरफराज खान सफदर साहब, लेकिन उर्दू जरा गाढ़ी है उनकी। जब वो किसी चीज पे रिसर्च करते थे, तहकीक करते थे, तो किताब का रेफरेंस देने के लिए असल किताब लाजमी देखते थे वो। हमारे यहां ये होता है ना कि फला ने फला किताब पे लिखा है, तो वो फला किताब मंगवाते थे। उन्हें पता चला कि ये किताब दुनिया में तुर्की के फला लाइब्रेरी में है, तो बंदे को भेजा जहाज से, जाओ फला जगह ये किताब तलाश करके सफा खोल के मुझे बताओ कि ये इबारत लिखी हुई है या नहीं है। इस तरह से किताबें लिखते थे वो। अवाम में मशहूर होना एक अलग चीज है, स्पीकिंग पावर का आना एक अलग चीज है, और इल्म का होना एक अलग चीज है। जिस शोबे से मुताल्लिक आप तहकीक करना चाह रहे हो तो उस शोबे के माहिरीन की किताबों से आपको फायदा उठाना पड़ेगा, इसके बगैर आप उस शोबे में तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल बिल्कुल फारिग तरीन लोग इंग्लिश के चंद एक जुमले इस्तेमाल करेंगे, भरम में लाने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं, पढ़े लिखे, पीछे से क्या होंगे, बिल्कुल खाली। इसका यह मतलब नहीं कि जो स्कॉलर इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं आप मेरी तकरीर उस पर फिट कर दें कि ये फारिग आदमी है, इनमें पढ़े लिखे भी होते हैं। मेरा मकसद है सिर्फ पढ़ा लिखा होने के लिए इतना काफी नहीं है कि आप इंग्लिश में अपनी बात कर रहे हैं, इतना काफी नहीं है, पहले नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। देखें गांव देहातों में उर्दू की वैल्यू है। हमें याद है हमारे एक रिलेटिव ने बताया कि उनके दादा लाहौर से कराची आए, पुरानी बात है 1960 या 65 की, तो लाहौर जाके कहने लगे कि कराची का बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है, उर्दू में बात करता है। समझ में आ रही है बात, उस वक्त उर्दू इस्तेमाल करना पढ़ा लिखा होने की बोलो दलील थी। علامت تھی کہ اردو بول رہا ہے. ہم سرگودا جایا کرتے تھے بچپن میں, ہمارے بھائی بتاتے کرتے تھے کہ پولیس والے نے اگر روک لیا آپ کو, آپ اس سے اردو میں بات چیت شروع کر دیں تو وہ چھوڑ دیتا تھا. ایسا بچہ شریف لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے, پڑھا لکھا لگ رہا ہے اور شریف لگ رہا ہے. ہم بھی جایا کرتے تھے, ہمیں یاد ایک دفعہ ہمارے گھر وہاں ہمارے نانا کا گھر تھا تو مجھے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, روٹیاں تندور پہ نا کہ کھانا پک رہا ہے جاؤ روٹیاں لے آؤ. میں گیا تندور پہ, میری عمر 13 سال 14 سال ہوگی, میں نے جا کے کہا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں 10 روپے کی روٹیاں چاہیے 20 روپے کی روٹیاں چاہیے, صاف اردو میں نے استعمال کی تو سب مجھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کہ اتنی تمیز سے روٹی مانگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو, صحیح ہے نا, تمیز کی زبان ہے نا اردو. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ عورت تھی جو کوئی دیہاتی عورت تھی, وہ تندور پہ روٹیاں بنا کے بیچ رہی تھی, وہ بھی مجھے دیکھنے لگی کہ وڈا پتہ نہیں کوئی کراچی نو منڈا آیا ہے تے وڈی تمیز سے بات کر رہا ہے جیسے کوئی معاشرتی علوم کا پیپر حل کر رہا ہو یہاں بیٹھ کے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 10 روپے کی روٹیاں دے دیے یا 20 روپے کی یا جو بھی اس زمانے میں ریٹ تھے, تو وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے, ہنس بھی رہے تھے کہ یہ کس اسٹائل میں بات کر رہے بھائی, اتنی تمیز روٹیاں لینے کو رشتہ لینے آئے ہو کیا, بڑی عزت تھی اردو کی زبان, ایسی اصل میں بڑی خوبصورت زبان ہے لیکن اردو دانوں نے اس کی قدر نہیں کی. اور کمال کی بات یہ کہ اردو میں اردو پہ پنجاب میں کام زیادہ ہوا ہے, پنجابی قوم نے اردو کو زیادہ پروموٹ کیا ہے. آپ جتنی لغات اٹھا کے دیکھ لیں ڈکشنری کی کتابیں وہ پنجاب والوں میں ملیں گی, بڑے بڑے شاعر آپ کو کہاں ملیں گے پنجاب میں, علامہ اقبال نے اردو کو کتنی ترقی دی, وہ تو پنجابی تھے. خیر ابھی یہ میں اردو کے فضائل تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ موضوع نہیں ہے. ابھی تو میرا بتانے کا مقصد یہ کہ جس چیز کا کلچر میں جس کو عزت سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو عزت سمجھنا شروع کر لیتے ہیں, جس کو ذلت سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو ذلت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا نا ٹوٹل اے ٹو زیڈ اردو کے فضائل پر بیان کروں گا, مزہ نہ آئے پیسے واپس, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اردو ہے کیا اور کیسے ہم نے اس کے ساتھ ناقدری کی ہے. زبانیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور زبانوں سے پورا کلچر چینج ہو جاتا ہے. دیکھو جس قوم کی کا جو کلچر ہوگا نا اس کا اثر اس کی زبان میں آتا ہے. قوم تہذیب یافتہ ہوگی تو زبان کیا بن جائے گی, تہذیب یافتہ. اردو زبان مغل بادشاہوں کے دور میں ان کے درباروں میں بنی ہے, یہ ترقی کی ہے اس نے. تو بادشاہوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا تھا نا, تمیز والا ہوتا ہے بادشاہوں کا, بدتمیزی والا ہوتا ہے بادشاہ, کبھی شہزادے سے ایسے بات کرتے ہیں دفاع یہاں سے بے غیرت, اس معذرت کے ساتھ ممبر پہ گالیاں دینا مقصد نہیں ہے. بادشاہ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں, بادشاہ کو تو بادشاہوں والا اسٹائل ہوتا ہے نا, ذل سبحانی اب زردہ کھائیں گے کہ بریانی. ہمارے گھر میں جب گھر والوں نے پوچھنا ہو کہ آپ کیا کھائیں گے, مختلف اسٹائل ہیں پوچھنے کے. بادشاہوں کے ہاں بھائی ذل سبحانی کیا چلے گا, زردہ کی بریانی. تو خیر وہ اسٹائل ہوتا ہے بادشاہوں کا, نہیں بھی ہوتا آج کل نہیں ہوتا لیکن پہلے زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا. لشکر اردو کہتے ہیں لشکر کو, ترکی زبان کا لفظ ہے یہ, تو لشکر. تو ہندوستان میں دنیا کی بہت ساری قومیں جمع ہوئی ہیں, تو ان قوموں کے جمع ہونے سے ایک زبان وجود میں آئی ہے. چونکہ گورنمنٹ کا بادشاہوں کا تمام لشکروں سے تعلق تھا نا, تو وہ جو زبان ایک وجود میں آئی ہے اس کو سب سے زیادہ ترقی ملی ہے بادشاہوں کے محلات میں. میں نے برما میں جو بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا اس کی شاعری دیکھی ہے لکھی ہوئی. بادشاہ بہت بڑا شاعر تھا, کیا شاعری تھی اس کی, آپ حیران ہو جاتے ہیں. تو جو قوم جس کی زبان ہوتی ہے بالآخر وہ کلچر اس کی زبان میں آتا ہے, تو اگر آپ وہ زبان سیکھتے ہیں تو آپ بھی اسی تہذیب میں ڈھل جاتے ہیں, اور اگر آپ اس زبان سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تہذیب آپ سے آہستہ آہستہ ختم. میں سندھ کی کسی بڑی یونیورسٹی میں تھا, तो वहां जो वाइस चांसलर थे उन्होंने मुझे बुलाया, सिंधी स्पीकिंग थे, बहुत एजुकेटेड माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि बेटा हम कराची जाया करते थे तहजीब सीखने के लिए बचपन में, हमारे वालदेन कहते थे कराची के स्कूलों में पढ़ो, वहां क्या सीख के आओगे। हालांकि उनकी सिंधी खुद एक बड़ी मीठी जबान है, मिठास सिंधी जबान में बहुत ज्यादा है, लेकिन तहजीब किस में है? तो कह रहे तहजीब सिखाने के लिए कहां भेजा करते थे, कराची के स्कूलों में। मैंने कहा अंकल किस तरह, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कराची के स्कूल और तहजीब, अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं तो मुझे तो उल्टी आने लगी सुन के, कराची के स्कूल और क्या सिखा रहे हैं, अब के हालात देख। तो क्या हो गया, लगाया ही नहीं है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि देखें कराची में यह सिखाया जाता था कि हां नहीं बोलना, क्या बोलना है, जी बोलना है, इधर आओ, ये नहीं, हमें टीचर, हमारी जो टीचर थी वो पढ़ाती थी, बोलते हैं इधर आओ नहीं बोलते, इधर आइए, क्या कहते हैं, इधर आइए, बैठिए, जाइए, खाइए, आइए, समझते हो कि नहीं समझते, दफा हो जाइए। तो कह रहे बड़े तमीज का बच्चा बन के आता था जो कराची का पढ़ा हुआ होता था। ये वंस अपॉन अ टाइम की बात कर रहा हूं, ऐसा ना उस तमीज के लिए कराची में स्कूलों में आप बच्चों को दाखिल करवाना शुरू कर दें, अभी नहीं है, अभी तो गुटके पान और माशाल्लाह जो भी हिसाब चल रहा है वो आपको पता है क्या हो रहा है। हमारे लीडरों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेड़ा गर्क किया है, तहजीब की भी ऐसी की तैसी कर दी, और जिनको हमने लीडर बनाया उन्होंने किया है सब कुछ, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। वो राहत इंदौरी कहा करते थे ना, मैंने कहीं इंडिया में पुलिस के खिलाफ एक शायरी की कि पुलिस चोर है, तो पुलिस वाला ने बुलाया कि तुमने हमको चोर बोल दिया। तो कहते हैं मैंने कहा कि भाई वो मैंने पुलिस को कहा है, आपकी पुलिस को थोड़ी कहा है। उन्होंने कहा पता नहीं कि दुनिया को कि किस कौन सी पुलिस चोर है, सब समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। तो ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तकरीबन तीनों का एक ही हाल है, लेकिन हमारी पुलिस चोर, क्योंकि पुलिस वाले भी बयान सुनते हैं भाई, नहीं है वो चोर। तो कल्चर जब किसी चीज को इज्जत का जरिया बनता है, कल्चर, तो इंसान उसी में इज्जत तलाश करना शुरू कर देता है। तो बाज दफा कल्चर सही चीज को काबिल इज्जत बनाता है, बाज दफा कल्चर में इससे गलती भी होती है। अल्लाह पैगंबरों को इसलिए भेजते हैं कि अगर अल्लाह ताला पैगंबरों के जरिए इंसान को हिदायत ना दें, गाइडेंस ना, तो इंसान कल्चर की भेंट चढ़ जाए। अरब में पत्थरों के पुजारियों को अच्छा समझा जाता था, यह सही कल्चर था, गलत कल्चर था, गलत कल्चर। हिंदुस्तान में गाय का गोश्त बुरा समझा जाता है खाना, यह सही कल्चर है, गलत कल्चर है, गलत कल्चर है। आप इतनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, गाय के गोश्त में प्रोटीन का लेवल बकरे, दुम्बे, मछली की निस्बत बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है बल्कि बोलो बहुत ज्यादा है। बच्चों को तो अभी फिर टॉपिक से हटता रहता हूं मैं, क्या करूं, थोड़ा सा बीच में चलता है ना क्याम ताम। बच्चों को गाय का गोश्त खिलाया करो, समझ रहे हो, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बड़ों के लिए भी मुफीद है अगर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे ही थोड़ी कुरान में चार जानवरों को खास तौर पे बयान किया है, मिन अज़्ज़ानिफ़नैन व मिन अल-माज़िफ़नैन व मिन अल-बकरिफ़नैन व मिन अल-इबिलिफ़नैन। अल्लाह कहते हैं चार किस्म के जानवर हैं मैंने हलाल किए तुम्हारे लिए, कौन है इनको हराम करने वाला। उनमें अल्लाह ने गाय का जिक्र किया, उनमें अल्लाह ने ऊंट का जिक्र किया, उनमें अल्लाह ने बकरी का जिक्र किया, उनमें अल्लाह ने दुम्बे का जिक्र किया, भेड़ भी दुम्बे में शामिल है, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी। अच्छा, नर का भी जिक्र किया अल्लाह ने, मादा का भी जिक्र किया कि नर भी हलाल मादा भी हलाल। इसका मतलब इन चार जानवरों में अल्लाह ने अलग से इनको हाईलाइट किया है ना। अबे भाई हलाल तो बहुत सारे जानवर हैं, हिरन भी तो हलाल है, बारहसिंगा भी हलाल है, मारखोर भी हलाल है, 25 लाख रुपए लगता है गोली चलाने का, कहते हैं शिकार, हलाल का मतलब पहले गवर्नमेंट से परमिशन ले ले, मुर्गा भी हलाल है, लेकिन कुरान चार जानवरों को अलग से नुमाया कर रहा है, इसका मतलब कुछ खास है इनमें। बकरीद में अल्लाह ने मुर्गियां काटने का क्यों नहीं हुक्म दिया, डॉक्टर तो कहते हैं व्हाइट मीट खाएं व्हाइट मीट खाएं, अल्लाह क्या कहता है रेड मीट खाओ, कोई फर्क तो होगा ना। डॉक्टर को क्या पता, डॉक्टर को क्या पता कि व्हाइट में और रेड में कितना फर्क है। खिलाएं, सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा, आपको मेरे बयाना समझ में आना शुरू हो जाएंगे। जो रेड मीट खाएगा उसको हमारे बयाना, उसको हमारा बयान समझ में आएगा, शेर हो गया ना, जो रेड मीट खाएगा उसको हमारा बयान समझ आएगा, जो रेड मीट नहीं खाएगा उसको बयान समझ में नहीं आएगा। अब मैं ज्यादा नहीं इस पे जाता, वो बयान खवातीन सुनती हैं एकदम वहीं से बटन दबा के बंद कर देती हैं, बोले दफाओ यहां से, हर वक्त एक ही बात करता रहता है, तो मैं नहीं कर रहा ना वो बात, ठीक है ना। एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उनमें ख्वाहिश नफ्स बहुत ज्यादा बढ़ती थी, उन्होंने कहा मैंने गोश्त अपने ऊपर हराम कर दिया है। गोश्त से मुराद ये रेड मीट, ऊंट का गोश्त, तो आपने मना किया उनको, मना किया क्यों, फरमाया तजव्वुजुल वदूद अल वलूद, ये जब ख्वाहिश बढ़े तो इसको खत्म ना करो बल्कि निकाह के जरिए इसकी तकमील करो, क्योंकि इस्लाम चाहता है तुम्हारी नस्ल बढ़े। तो इससे पता चलता है कि गोश्त खाए भी वही जो ज्यादा शादियां भी करे और नस्ल भी बढ़ाए, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है, वरना फिर फटोगे, जैसे डॉक्टर मना कर रहे हैं ना वो सही मना कर रहे हैं। काम आपके बकरियों वाले और खुराक आपने शेर वाली रखी हुई है, तो ये एडजस्ट बोलो नहीं होगा। मेरे मुंह से निकल रहा था काम बकरों वाले, लेकिन मैंने कहा नहीं, बकरा भी इतना बेहिस नहीं होता जितनी आज मुसलमान बेहिस हो गया है। अच्छा, अभी हम मस्कत गए तो वहां एक मुर्गियों का फॉर्म था, उन्होंने मुझे विजिट करवाया ना। अच्छा, मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही हैं, ब्रीडिंग के लिए, अंडों के लिए, मुर्गे हैं ही नहीं। मैंने कहा मुर्गे कहां हैं, ये सेटअप क्या है भाई। उन्होंने कहा वो एक वो मुर्गा नजर आ रहा है वो देखें। मैंने कहा हां, वो नजर आ रहा है वो भी, मुर्गे शॉर्ट मार्केट से। मैंने कहा मुर्गे इतने थोड़े और मुर्गियां, उन्होंने कहा 9 मुर्गियां या 10 मुर्गियों पर एक मुर्गा है ब्रीडिंग के लिए। मैंने कहा यार मुर्गा ही हमसे अच्छा निकला क्या है? यानी मतलब आप सोचो ना कितनी तावीलात करें हम, हर जगह जानवरों में भी, मेडिकली भी, मजहब में भी, हमें यही नजर आ रहा है भाई, या तो ये सब गलत हैं, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम। बकरियां देख लो, 30-30 बकरियों पे एक बकरा रखा जाता है। ये पौधों में भी है, जो नर दरख्त है ना खजूर के, एक होता है, और मादा दरख्त 40-50 होती हैं, मादा दरख्त, समझ, खजूर में भी नर मादा फूलों का मिलाप होता है ना, तो नर एक होगा और मादा कितने होंगे जो दरख्त खजूरों के, 30-40। पौधों में भी यही निजाम है मेरे भाई, जानवरों में भी सेटअप है, तो इंसान पे पता नहीं क्या कमबख्ती आई हुई है। आप कह सकते हो फिर इतने सारे आदमी अल्लाह ने फिर पैदा क्यों किए, फिर अल्लाह ऐसे ही करता ना कि भाई 10 औरतें पैदा करता और एक आदमी पैदा कर देता। उसका जवाब यह है कि फिर अल्लाह ने इतने मुर्गे पैदा क्यों किए, जितनी मुर्गियां पैदा होती हैं मुर्गे भी उतने ही होते हैं, लेकिन वो बाकी मुर्गे कटने के लिए होते हैं। तो मर्द भी किस काम के लिए है, कटने के लिए। आप कहेंगे भाई ये क्या कह रहे हो मौली साहब, क्या अगली बकरा ईद में हम खूंटे से बंधे क्या, अपने लिए कसाई मंगवाएं, कटने का क्या मतलब है। मर्द औरतें बराबर रेशों से पैदा होते हैं, मगर मौत का शिकार, मौत का रेशो मर्दों में औरतों की निस्बत ज्यादा है, ज्यादा बीवियां रखे वो, मर्दों में मौत का रेशो बहुत ज्यादा है औरतों से। जब जंग छिड़ती है कौन कटता है, बोलो ना, मर्द कटते हैं। ऐसे जैसे जंग अजीम में देख लो ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके तो मर्द ही खत्म हो गए थे, तभी तो उनका फैमिली सिस्टम तबाह हुआ अंग्रेजों का, 2 शादियों पे आई नहीं वो, एक एक शादी, और उसके नतीजे में क्या हुआ, जिना फैला और ऐसा कि बापलेस मुआशरा बन गया। पहली और दूसरी जंग अजीम का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ना, गोरों के बाप मार्केट से शॉट। आप कह सकते हो कि पहली जंग अजीम में गुर्बत फैली, जर्मनी की करेंसी सस्ती हो गई, ओ ये कम शॉट है, जर्मनी में अब्बा मार्केट से क्या हो गए शॉट, वला तो जिना बच्चे पैदा हो, ये सबसे बड़ा मसला हुआ है। करेंसी मार्केट से शॉट हो जाना या चीनी शॉट हो जाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मर्द इतने कटे हैं उनके, इस्लाम इस्लाम में इससे ज्यादा मर्द कटे हैं, पता है आपको? इस्लाम में जो जिहाद के नाम पे मर्द कटे हैं उनका रेशो गैर मुस्लिमों में जो डेथ रेशो या शहादत का रेशो, आप कह लें मुसलमानों में जो शहादत का रेशो है वो गैर मुस्लिमों की डेथ रेशो से बीसियों गुना ज्यादा, मगर मुसलमानों का फैमिली सिस्टम तबाह नहीं हुआ। एक जंग में ऐसा भी हुआ है कि 10,000 सहाबा और ताबीईन शहीद हुए हैं एट अ टाइम, एक लड़ाई में 10,000, किसी इलाके में 10,000 मर्द अचानक खत्म हो जाएं, उसमें बेवाओं का क्या हाल होगा? लेकिन सहाबा के दौर में बेवगान के लिए कोई ट्रस्ट नहीं बना, क्योंकि जो जिंदा है वो फौरन क्या कर रहा है, वो लेकर आ रहे अपने। अफगानिस्तान को देख लो, 20 साल अमेरिका से लड़ाई हुई ना नेटो से, हर घर में कोई ना कोई शहीद है अफगानिस्तान में, हर घर में 16 लाख अफगानी तो शहीद हुए हैं रशिया के खिलाफ लड़ते हुए, मगर अफगानिस्तान का फैमिली सिस्टम तबाह नहीं हुआ। 20 साल में बेतहाशा लोग शहीद हुए हैं, फैमिली सिस्टम तबाह नहीं हुआ। ऐसा हुआ, एक घर में 7 भाई हैं, एक शहीद हुआ तो क्या हुआ, दूसरे ने उसकी बेवा से भी शादी कर ली और अपनी अपनी बीवी भी है, दूसरा शहीद हुआ, तीसरे ने तीनों को रख लिया अपने निकाह में, तो भैया मसला ही नहीं वहां खड़ा हुआ। यहां इतनी बड़े पैमाने पर शहादतें हुई नहीं है, हर घर में कोई कंवारी लड़की बैठी हुई है, बूढ़ी हो रही है, और हर दूसरे घर में कोई बेवा बैठी हुई है, और जो हैं भी उनके भी शादी जोड़ की नहीं हो रही, कमतर लोगों में हो रही है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की की शादी 8वीं पास से हो रही है, तुम रिश्ते ही मार्केट से शार्ट है तो फिर नतीजा यही निकलेगा ना, एक पीएचडी से की शादी हो रही है मैट्रिक के भागे में से। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, तो आदमी किस काम के लिए मेरे भाई, कटने के लिए। तो एक जंगों में कटते हैं, और कहां कटते हैं, हादसों में कटते हैं, फैक्ट्री की छत गिरी, इतने मजदूर हलाक, यहां कौन मरा, छतें गिरती हैं फैक्ट्रियों की, कोयले की कान में काम करते हुए इतनी लेडीज हलाक हैं, इतनी खवातीन या मर्द, मर्द बाइकें चलाते हुए सर खुल गया, किसका खुलता है बाइकें चलाते हुए सर, खवातीन का, मर्दों का? आप जरा जियाउद्दीन या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल इमरजेंसी में चले जाओ, आपको लाइन नजर आएगी आदमियों की, टांग तोड़वा के आया हुआ है, कोई घरेलू झगड़े में गोली सर पे लग गई इसके, या इसने मार दी किसी के, 9 या 10 पेशेंट अगर मर्दों के होंगे तो फिर एक किसका आ रहा होगा, खातून, क्योंकि खवातीन के सास बहू के झगड़े होते हैं, उनमें मर्डर केस नहीं होते, होते हैं लेकिन टाइम लगता है, या तो सास बहू को टॉर्चर कर करके मारती है लेकिन 15-20 साल लगते हैं उस मरने में, या बहू सास को मार देती है उसमें भी 15 साल यानी टाइम गुजार लेती है वो, तभी तो जो बहुएं आती है ना शिकायतें लेके, मेरी सास की, मैं कहता हूं सास की उम्र कितनी है, 60 साल, मैंने कहा 4-5 साल टेंशन दो खुद ही चली जाएंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा कहना नहीं चाहिए, यानी एक मिसाल समझाने के लिए, थोड़ा सा टाइम रह गया चले जाना है उन्होंने, लेकिन सास को अगर बहू सतारी वो बेचारी क्या करेगी तो उसको भी मैं कहता हूं आपका थोड़ा सा टाइम रह गया है, क्या ख्याल है भाई, बर्दाश्त कर लो भाई, दोनों ने जुदा तो होना है ना, ये मरे तो भी वो मरे तो भी, तो कोई भी मरेगा तो सेटअप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो बहू को। तो मर्दों में डेथ रेशो मेरे भाई बहुत ज्यादा है, खवातीन में इतना नहीं है, तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, मर्द अल्लाह ने कटने के लिए पैदा किए हैं, मरने के लिए पैदा किए हैं। आप देख लो हर दूसरे घर में बेवा नजर आएगी आपको, ऐसी बहुत कम है कि आदमी बाद में गया हो, और खातून हैं, ऐसे केसेस भी हैं लेकिन अक्सर वो कहती हैं पहले आप, ठीक है उसके बाद मैं पीछे आ रही, काइंडली पहले क्या है, इज्जत एहतराम है शौहर का, पहले आप, वो सुना है लतीफा पहले आप वाला, वो एक खातून को प्रेगनेंसी थी तो साइंसदानों ने एक दवा इजाद की कि जब ये हामला खातून को खिलाई जाएगी ना बच्चा तमीज का पैदा होगा, बच्चा क्या पैदा होगा, तमीज, साइंसदान भी तजर्बे करते रहते हैं ना, तो वो एक कैप्सूल खिलाया, बच्चा पैदा होके कह रहे आदाब आदाब, इतना तमीज, साइंसदानों ने कहा यार तो बड़ा जबरदस्त तजर्बा है, इकट्ठे 6-7 कैप्सूल एक खातून को खिला दिए उन्होंने, कि यार जब एक कैप्सूल का ये असर है इतना तमीज का, तो छह कैप्सूल का क्या असर होगा? तो छह कैप्सूल खिलाए तो बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। बड़ी टेंशन हो गई भाई, एक महीना ऊपर हो गया, अल्ट्रासाउंड किया पता चला दो बच्चे हैं, हर एक दूसरे को कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप, इस चक्कर में एक महीना ऊपर हो गया। तो खवातीन भी शोहर से कहती हैं पहले कब्र में आप जाएं, उसके बाद में पीछे आ रहे। अच्छा, मेरा फादर डे पर एक बयान चला है फादरों के हुकूक के बारे में, उसमें बाज वो जब शॉर्ट के लिए अलग से चला ना, तो बहुत ज्यादा खवातीन ने एक मेरे खिलाफ ना एक वो एक तरह की गोया कंपेन चलाई है कि ये मर्दों के हुकूक की बात कर रहे हैं, औरत के हुकूक की इसके कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा ना कि मर्द पे बड़ा जुल्म हो रहा है अदालत में बच्चों के मामले में, ये मैंने कहा, और हो रहा है जुल्म, ये तो पूरी दुनिया कानून ऐसा बना हुआ है कि वो जुल्म होगा लाजमी, कानून से कौन लड़ सकता है भाई। तो उसमें बात खवातीन ने ये कहा है कि क्या औरत के बच्चे नहीं है कि जी मर्द को उठा के दे दिए जाएं? तो ये खूब समझ लें, ना मैं ये कहता हूं ना इस्लाम ये कहता है कि डिवोर्स के बाद बच्चे मर्द को दे दिए जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि औरत से छीन लिए जाएं, हम ये कह रहे हैं कि इधर रहें या उधर रहें, हक किसका है? दोनों का है। अगर मर्द के पास रहते हैं तो औरत को मर्द बच्चों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, औरत के पास रहते हैं तो मर्द भी जब चाहे अपने बच्चों से मिले वो, और हफ्ते में एक दिन कम से कम 24 घंटे के लिए अपने पास रख सकता है उसको, कोर्ट ये काम नहीं करने दे रही। जब बच्चा बाप के पास होता है तो कोर्ट कहती है मां जब चाहे मिले और जब चाहे अपने घर भी ले जाए, मुलाकात करके ले आए। लेकिन अगर बच्चा मां के पास है तो फिर ये नहीं कि बाप जब चाहे मिले, बाप कोर्ट में जाएगा, इतना खर्चा उठाएगा, आने जाने कन्वेंस का खर्चा देगा, फिर घर में नहीं ले जा सकता, दादी नानी को दादी और दादा से नहीं मिला सकता, उनको कोर्ट में लाना पड़ेगा, बड़ी टेंशन है, और सारा खर्चा मर्द के कंधों पर, तरबियत टोटली औरत की मर्जी की। ये जुल्म है भाई, इसके खिलाफ है हम। ये तो कोई समझदार औरत भी होगी कहेगी 100% जुल्म है। यही औरत जब दादी बनेगी ना और पता चलेगा मेरे पोते से मिलने से मुझे रोक दिया, फिर मैं कहूंगा ये किसके हुकूक की बात की हमने। तो हम इसके कायल नहीं है कि बच्चा मां से छीन लिया जाए, इसके कायल नहीं है हम, बल्कि जिन्होंने छीना है हम उनको जालिम कहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे ना मां से छीनना गलत है, बाप से छीनना भी इसी तरह गलत है। अच्छा खैर, हम वो कटाने की बात कर रहे थे, तो कट्टे बहुत कौन है, कट्टों का माल है मर्द जो है ना, किसका माल है वो, होता है ना बछड़ा, एक फैंसी बछड़ा होता है जो बिजनेस के काम आता है, एक होता है वो, हमने पिछले साल अपने लड़कों को भेजा कि यार वो मैं इज्तिमाई कुर्बानी करता था, 40-50 बछड़े हम खरीदते थे, बिजनेस के तौर पे करता था मैं ये काम और बताता भी था कि बिजनेस है। तो वो गया, मुझे वहां से फोन कर रहा है, मुफ्ती साहब कट्टों का माल मिल रहा है, कट्टों का। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कट्टों का माल, क्या मतलब? तो कट्टों का माल मिल रहा है, कट्टों का माल। मैंने कहा क्या है कट्टों का, पता नहीं क्या चीज है। फिर पता चला कि वो जो कसाई काटते हैं ना जिसको, वो बछड़े जिनमें कोई ब्यूटी नहीं होती, जिनको पालने के लिए कोई नहीं लेके जाता, सिर्फ गोश्त की लालच में उनको खरीदा जाता है, वो कटते हैं और वो सस्ते होते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं होते, इसको कहा जाता है कट्टों का माल। तो मर्द क्या है मेरे भाई, कट्टों का माल है। फितरत जब चाहती है उसको काट के रख देती है कि चल रहे तू लड़ने के काम आएगा, तू जंगों में लड़ेगा, मुल्क कुछ सही लड़ते हैं, कुछ जालिम बन के लड़ते हैं, कुछ मजलूम की मदद के लिए लड़ते हैं और कत्ल होते हैं। आप देखो ना, जायदादों के झगड़ों में कत्ल, और फिर हादसाती अमवात, इन तमाम चीजों का रेशो आदमियों में ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। अच्छा खैर, हम दोबारा अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं यह कर रहा था कि कल्चर में जब कोई चीज काबिल इज्जत समझी जाती है तो लोग उसमें इज्जत तलाश करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते कि ये हकीकत में काबिल इज्जत है भी या नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने हमें कल्चर की भेंट नहीं चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है, वो पैगंबर आपको बताते रहेंगे ये सही है और ये गलत। अब वो गाय के गोश्त पे बात आई थी कि कल्चर, इंडिया का कल्चर क्या है, गाय का गोश्त नहीं खाना, कितना बड़ा हिंदुओं ने अपना नुकसान कर लिया, कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपने मजहबी लोगों की बातों में आके। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते किसी कौम का, लेकिन हम हिंदुओं से कहते हैं कि तुम क्यों अपने मजहबी स्कॉलर्स की बातों में आ रहे हो भाई, जिन्होंने तुम्हें गाय के गोश्त जैसी अजीम नेमत से महरूम कर दिया, क्यों आ रहे हो उनकी बातों में? खाओ खिलाओ लोगों को, खुदा हलाल चीजों के पे पाबंदी से खुश, अल्लाह को क्या मिलेगा इससे कि, या भगवान जिसको तुम अल्लाह को तुम भगवान कहते हो, तो खुदा को क्या मिलेगा कि तुम इसका गोश्त नहीं खाओ? अल्लाह को इससे क्या खुशी हो रही है? अल्लाह ने पैदा किसके लिए किया इन जानवरों को? हमारे लिए पैदा किया। जब इसका दूध पीते हो, मुर्गी भी तो खाते हो ना, अगर जुल्म है गोश्त खाना तो वो मुर्गी का गोश्त खाना भी जुल्म है, और अगर जुल्म नहीं है तो गाय का गोश्त खाना भी जुल्म नहीं है। तो अरब का कल्चर था बुतों की इबादत, कुछ चीजें कल्चर में ठीक भी थी, कुछ चीजें कल्चर में गलत भी थी, जो ठीक थी इस्लाम ने उसको बाकी रखा। अरब का कल्चर था हज के मौके पे सफा मरवा में दौड़ते थे, जब इस्लाम दुनिया में आया तो बाद सहाबा के दिल में ख्याल आया कि ये तो जमाने जाहिलियत की रस्म है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तो कुरान की आयत नाजिल हुई, इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्ला फमन हज्जल बैता अवियतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा, कि ये शाइरुल्लाह में से हैं, जो भी हज करेगा या उमरा करेगा इसमें चक्कर लगाने में कोई हरज नहीं है, उसे कोई गुना नहीं मिलेगा। वो ये ना समझे कि मैं जमाने जाहिलियत की रस्म पूरी कर रहा हूं, क्योंकि वो रस्म ठीक थी। तो पता चला भाई, कल्चर की हर चीज गलत भी नहीं होती, कल्चर की हर चीज ठीक भी नहीं होती। बाज लोग कल्चर की बिलावजह भी मुखालफत कर रहे होते हैं। अब कल्चर की बिलावजह मुखालफत, कल्चर में एक ड्रेस राइज हो गया है, आप खामखा में दूसरा स्टाइल के कपड़े पहन के घूम रहे हो, एक अजीब ही लग रहे हो कि ये पता नहीं मरीख से आया है या कोई और सैयारे से आया है। जैसा जैसा लिबास का रिवाज है वही वाला लिबास पहनो भाई, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मैं जब अरब मुल्कों में जाता हूं तो कोशिश करता हूं वो जो उनका जुब्बा है ना वो पहनूं। वजह उसकी है कि बात कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, आप लोग भी महसूस ना कर जाए, शलवार कमीज में ना अरब मुल्कों में ऐसा लगता है जैसे चंदा मांगने आया हुआ आदमी, माजरत के साथ। हमारा ड्रेस है, मैं फखर है इस पे, लेकिन पता नहीं ऐसा गरीब गरीब महसूस क्यों होता है। शलवार कमीज बहुत अच्छा ड्रेस है, लेकिन हमने चंदे मांग मांग के ड्रेस को क्या कर दिया है। चंदे ऑफिशियली भी मांगे जा रहे हैं हमारे हुक्मरान भी, जब भी सऊदी अरब के बादशाह से मिलेंगे तो भाई अब तो मीम्स भी आ रही है ना, जब भी मिलेंगे वहां भी चंदा और मुख्तलिफ टाइप के चंदे। यहां से ऐसे भी चंदे हो रहे हैं कि किसी मौलाना टाइप के आदमी ने एक चार दीवारी खड़ी की, बुखारी रखी, बच्चों को बिठा दिया, यतीम बच्चों को तस्वीरें खींच के अरबों को भेज दी कि देखो मैं हम बुखारी पढ़ा रहे हैं, हम सही हदीसें मदरसे के तलबा को पढ़ा रहे हैं, बुखारी पढ़ा रहे हैं। दे दनादन वहां से चंदा आना शुरू, या कोई मदरसा नहीं और ये जनाब अपनी दाढ़ी को भी कैश करा रहा है और यतीम बच्चों को भी कैश करा रहा है, ऐसा भी होता है। तो शलवार का फिर ऐसा इमेज के गरीब गरीब गरीब, तो ऐसा इमेज बन गया है ना कि मुझे डर लगता है कि शलवार कमीज पहन के किसी अरबी के पास जा रहे हो ये ना समझे कि ये क्या मांगने आ रहा है। तो पहले हम अपने लिबास को इज्जत दे दें, चंदे ना मांग मांग के, उसके बाद इंशाल्लाह शलवार कमीज की इतनी इज्जत हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि ये चंदा देने आ रहा है। क्या ख्याल है? पता नहीं वो कब आएगा, इमाम मेहदी के दौर में आएगा या कब आएगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह करे। वो एक अरबी को किसी पाकिस्तानी ने बताया कि एक फैक्ट्री का मालिक बैठा हुआ था सऊदी अरब में, पाकिस्तानी था, करोड़पति आदमी, अरबी को जकात निकालनी थी, बंदा नजर नहीं आ रहा था। अरब भी तो आपको पता है बस बड़े लाओबाली सही होते हैं, बस जो आए पकड़ा देते हैं उसको, ये ले भाई। तो उसको नजर आया शलवार कमीज में बंदा बैठा हुआ है ना, ये गया और ऐसे नोटों की गड्डी निकाली, बोला ये जकात, ये ले। उसने कहा भाई मेरी फैक्ट्री है पाकिस्तान में, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा गरीब आदमी है, ये रख ले रख ले, गरीब आदमी रख ले रख ले। अरबी ने सोचा कि ये सफेद पोश गरीब है, सफेद पोश होते हैं ना जो मानते नहीं है कि मैं गरीब हूं। उसने कहा भाई मैं फैक्ट्री का मालिक हूं अल्लाह के बंदे, मुझे क्यों जकात दे रहा है? उसने कहा भाई गरीब गरीब, जब ज्यादा बहस हुई ना तो अरबी ने कहा कुल्लू पाकिस्तानी गरीब, बस तेरा पाकिस्तानी होना क्या है काफी है, ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत, जकात अदा हो जाएगी। अल्लाह से कयामत, अल्लाह पूछेगा ना कयामत में क्यों दी, अल्लाह पाकिस्तानी था, अल्लाह कहेगा जा अगले पिछले सारे गुना मैंने तेरे क्या कर दिए, माफ कर। तो ये इमेज ऐसा हुआ है, समझते हो? या फिर सलवार कमीज पे वेस्टकोट पहनी जाए, उससे थोड़ा सा भ्रम आ जाते हैं उससे थोड़े से। अच्छा खैर, तो कल्चर कितना खतरनाक चीज है, देखो इज्जत, सलवार का कल्चर वहां खराब हो गया ना हमारे, सलवार कमीज का। तो ये भी हमारी शायद हरकतें कुछ इस टाइप की होंगी। हालांकि वहां पाकिस्तानी बड़े सखी हैं, हरम में दस्तरखान लगाते हैं, मस्जिद नबी में इफ्तारियां करवाते हैं और कितना खर्च कर रहे हैं आपकी सोच से भी ज्यादा, लेकिन इमेज जो जा रहा है वो बड़ा खतरनाक जा रहा है। तो अब मैं जल्दी से बात को समेट के, ये टाइम सही है ना घड़ी का, है भाई सही टाइम है ना ये, तो मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। अब देखो, एक कल्चर है इस दुनिया का जिसमें आप इस कल्चर के लिहाज से अपने इज्जत चाहते हो। कुरान बार बार कहता है एक मैदान हशर का भी एक कल्चर होगा। सूरह वाकिया में अल्लाह ने फरमाया ना, खाफिज़ातुर राफ़िआ, जब कयामत कायम होगी तो बहुत से इज्जतदारों को जलील कर देगी और बहुत से जलील लोगों को इज्जत दे देगी, बहुत से जलील लोगों को इज्जत देगी। वो क्या मतलब, दुनिया में कल्चर की वजह से बहुत से लोग काबिल इज्जत समझे जाते थे, हकीकत में वो काबिल इज्जत नहीं थे। कयामत दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, जो हकीकी इज्जत वाले लोग हैं उन्हीं को इज्जत का सबब बनेगी, वो इज्जत देने का। बहुत से लोग दुनिया में कमतर समझे जाते हैं, कयामत क्या करेगी, उनको इज्जत दे देगी। दुनिया में इज्जत नहीं है, इससे पता चलता है कि भाई मैं और आप कुछ काम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें उसमें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही होती है, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल की नजर में वो काम इज्जत के होते हैं। एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, उससे बात समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, हम ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं फजर की अजान का टाइम हुआ। अब मसला यह है कि आपकी ट्रेन या बस अगर आबादी से गुजर रही है जहां अजानें होती हैं, तो फर्ज नमाज पढ़ने के लिए फिर अजान कहने की जरूरत नहीं है। सहाबी रसूल का कौल है अजानुल हय्यी यकफीना, महल्ले की अजान सबके लिए क्या हो जाती है, काफी। मिसाल के तौर पर आप घर में अगर फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो अजान थोड़ी कहते हैं, क्यों भाई मस्जिद में अजान हो चुकी है। लेकिन अगर आप कहीं जंगल में जहां अजान नहीं हुई तो आप अकेले भी नमाज पढ़ रहे हो तो सुन्नत मुअक्कदा है अजान देना, वहां आप क्या करेंगे, फर्ज नमाज के लिए क्या करेंगे, अजान देंगे। अब हम चूंकि थोड़े से मॉडर्न टाइप के थे उस वक्त कॉलेज में, जैसे लौंडे लपाड़े टाइप के होते हैं, कराची के कॉलेज हो, हम ऐसे घर से निकलते थे ना, कॉलेज पहुंचते पहुंचते रास्ते में कोई गोला गंडा और वो खरबूजे वाले तरबूज वाला कोई नहीं छोड़ते थे, हम गन्ने का रस पीते पीते आधा एक घंटा लेट पहुंचते थे क्लास में। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज बुरी नहीं समझी जाती थी कि एक घंटा लेट क्यों आ रहे हैं, बल्कि हमें अवार्ड इस पे दिया जा रहा था कि आ रहा है बंदा, ये बड़े बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि पहुंच रहे हैं क्लास में, समझते हो। और कराची में अक्सर ये होता है कि कॉलेज या स्कूल्स में क्लास ऑफ होने से पहले ही बच्चे निकल जाते हैं, यानी आते भी लेट हैं और अभी थोड़ा टाइम बाकी है निकल लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे भी ज्यादा ये मैं बात कर रहा हूं 89-90 की, 90s की बात कर रहा हूं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की हो गई है, अब तो दो दो साल तक तलबा तालिबिन को पता ही नहीं होता मेरा कॉलेज है किधर, तालिबिन को क्या टीचर को पता नहीं होता। सिंध में तो, सिंध में टीचर को तनख्वाह घर में मिल रही है, प्रिंसिपल की तनख्वाह मिल रही है, जबकि कॉलेज या स्कूल वजूद में है ही नहीं। बलोचिस्तान में भी ऐसे ही, क्योंकि मुझसे लोग मसला पूछते हैं ना कि मुफ्ती साहब मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और मुझे तनख्वाह मिलती है तो क्या ये मेरे लिए हलाल है, तो मैं कहता हूं भाई इसमें हराम वाली कौन सी बात, कह रहे मैं स्कूल जाता ही नहीं पढ़ाने के लिए। मैं कहता हूं भाई ये तो हराम है, आप क्यों नहीं जाते पढ़ाने के लिए, कह रहे मैं कैसे जाऊं है ही नहीं स्कूल, तो कहां से जाऊं मैं, मैप में है हकीकत में नहीं है। उस वक्त पता चला कि मुल्क माशाल्लाह तरक्की की राह पे गामजन है, सिंध में भी बलोचिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसने मुझे तस्वीर भेजी कुछ दिनों में, एक छोटी सी चार दीवारी है, गधे बैठे हुए अंदर पांच छह, उसने कहा ये स्कूल है, अब ये क्या करे आदमी, इनको क्या समझाया जाके, हराम फिर भी है वो तनख्वाह, इसलिए कि जब कोई चीज ही नहीं है तो तनख्वाह किस बात की ले रहा है भाई, तो रिजाइन दे दे। तो खैर कहां से कहां बात चली जाती है यार, हम واقعات اتنے ہیں نا, اتنے عجیب عجیب. اب آپ بتاؤ کوئی یونیورسٹی دنیا میں, آپ تو باہر سے آئے ہیں, کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی دیکھی آپ نے کہ چار دیواری ہو اور بہت اونچی تعلیم دی جا رہی ہو, اس میں پرنسپل کو بھی تنخواہ مل رہی ہو, اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو بھی تنخواہ مل رہی ہو, ٹیچروں کو بھی مل رہی ہو, اور جو فنڈ اسکول کی مینٹیننس پہ وہ بھی لوگ لے رہے ہوں, لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہو. یہ فیسلٹی آپ کو پاکستان کے علاوہ اور خصوصاً بلوچستان اور سندھ, الحمدللہ اس میں بہت آگے. میں نے تو ولاگ بنایا سندھ کے, سارے نہیں ہیں, سب اچھے بھی ہیں. اچھا خیر, تو بات کیا چل رہی تھی جلدی سے؟ ہاں, ٹرین میں جا رہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں یا جہاں کہیں قریب میں اذان نہ ہو تو وہاں پھر آپ فرض نماز اذان دینے کے بعد پڑھیں. اب ہم کالج کے عادی تھے تو نماز تو گھر میں ماحول تھا شروع کا, لیکن پروفیشنل مولانا ٹائپ کی چیز نہیں تھی ہمارے اندر کہ لوگ نسبت کر کے یہ مولانا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پسند نہیں تھا. نماز تو پڑھتے تھے, گھر کا ماحول تھا ہمارا, ٹی وی نہیں رکھا ہمارے والد صاحب نے گھر میں کبھی بھی, والد صاحب تو تھے بھی تبلیغ جماعت کے. اب کیا ہوا, فجر کا ٹائم ہوا تو اب مجھے مسئلہ کہ یار اذان دینی ہے, مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یار یہ لوگ کیا بولیں گے, یہ تو ملا نکلا, ہم تو اس کو پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے, یہ کیا نکلا, ملا نکلا, اب مجھے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا یار آج تو یہاں شرما رہا ہے اذان دیتے ہوئے, آج تو یہاں کیا کر رہا ہے, اذان دیتے ہوئے شرما رہا ہے. کل اللہ تعالی قیامت کے دن جب مؤذن کو اجر دیں گے اس وقت کہہ دینا اللہ مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک اس چیز سے مجھے موٹیویشن ملی کہ یار عزت وہ جو اللہ کی نظر میں ہو, اور اس سے زیادہ مجھے جو موٹیویشن ملی نا, جو کام میرا ضمیر, یعنی مجھے ملامت ہو رہی تھی کہ یار یہ لوگ بولیں گے ملا ہے, میں نے کہا اصل میں تو شرم ان کو آنی چاہیے, پوستیوں کو جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں فجر میں. رات ان کو خدا نے کھانا کھلایا, گہری نیند کس نے سلائی ان کو, بولو, اللہ نے. کتنے بڑے انعامات, اور جب چاہے اللہ سیکنڈوں کے اندر اس ٹرین کو ٹریک سے ہٹا دے, سارے پڑے ہوئے ہوں گے کٹے ہوئے, اور خدا کا ایک مطالبہ ہے کہ حی علی الصلاہ پہ لبیک کہو اور وضو کر کے میرے سامنے نماز پڑھو. تو شرم تو ان کو آنی چاہیے. میں نے کہا جب یہ غلط کام کرتے ہوئے ان بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی, تو ہمیں خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے شرم کیوں آئے. اس سے موٹیویشن ملی, ہم نے کھڑے ہو کر اذان دے دی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ اذان دینا بھی ایک شرم والا کام سمجھا جانے لگا ہے. ایک رشتہ ٹوٹا ہمارے محلے میں, ایک صاحب کی بات طے ہو گئی, لڑکی والے آئے رشتہ طے کرنے کے لیے, اچھا خاصا ایجوکیٹڈ لڑکا تھا, پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا, ہینڈسم, وہ اذان بھی دیتا تھا مسجد میں جا کے. اس نے اذان دی ہے تو لڑکے کے والد نے فخر سے لڑکی والوں کو بتایا کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ اذان بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ملا ٹائپ کا آدمی نکلا, رشتہ توڑ دیا. صحیح ہے نا, رشتہ توڑ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ او بھائی عزت اس چیز میں ہے جس میں اللہ کانفیڈنٹ کی, آپ جب کوئی کام کریں نا تو اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے. شرم کیسی بھائی؟ تو ہم نے پھر اذان دی, پھر ہم نے کہا یار ان پوستیوں کو شرم آنی چاہیے. انسان بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں, تکبر کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے انسان کی بھائی. یہ آج جو ہمارے ایک لبرل لوگ تھری پیس سوٹ ٹائی پہن کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا, پڑھا لکھا سمجھنا شروع کر دیا, بھائی تمہارے پر ذرا سی اللہ کی نظر ہٹ گئی, دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں. ہمارا ایک دوست تھا, قادیانیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اس نے. میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہے, لیکن اب اس موضوع کی مناسبت سے یہ اور مناسب واقعہ رہے گا انشاءاللہ. میں نائنتھ کلاس میں تھا یا ایٹ کلاس میں تھا اس وقت, تو وہ بیٹھنا شروع کر دیا قادیانیوں میں. وہ تھا بے روزگار لڑکا, تو قادیانیوں نے اس کو آفر دینا شروع کر دی. یہ لوگ ویزے کی آفر دیتے ہیں, لڑکیوں کی آفریں بھی دیتے ہیں, اچھا رشتہ کرا دیں گے تمہارا. اب ایک بے روزگار آدمی, اس کو اچھی اچھی آفریں ملنا شروع ہو گئیں تو وہ تو کھسکے گا نا. تو بحث کرتا ہم سے آ کے مرزا کے بارے میں, ہم اس کو سمجھاتے بھائی یہ جہنم کی آگ ہے, خدا کے بندے ایمان کیوں بیچ رہے اپنا, کیوں جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے. لیکن نہیں, جب پیسہ انسان کو اور عورت کی لالچ یہ چیزیں لگتی ہیں تو کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے. اور زیادہ تر سوسائٹی میں جو ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, जिनको ना जॉब मिल रही है ना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तो फिर वो इस तरह की तहरीकों की भेंट चढ़ जाते हैं। हुआ यह कि नाजामाबाद में कोई कादियानी का घर था, बड़ा बंगला, बड़ा करोड़पति सेठ था कोई, बड़ा हैंडसम। उसने मुझे फिर मुझे पूरी डिटेल बताई उसकी। उसने इसको कहीं शायद अपनी बेटी के चक्कर में डाल दिया कि अपनी बेटी से शादी करूंगा या कहीं और किसी और लड़की से, वल्लाहु आलम, क्योंकि वाकया बहुत पुराना है। मुझे वाकये के जो अहम पहलू हैं वो तो याद रह गए हैं, अब पूरी डिटेल मुझे याद नहीं है। किसी खूबसूरत लड़की की लालच दी हुई थी और लंदन के वीजे की। हम समझा समझा के थक गए। हमारे घर के बाहर ना एक सड़क थी, वहां एक नया प्रोजेक्ट बन रहा था तो खाली जगह थी, तो मैं रात को ले जाके इसको वहां बिठाता, आधा आधा घंटा समझाता, लेकिन इसकी खोपड़ी में बात नहीं आई। इसने शायरी भी शुरू कर दी थी मिर्जा कादियानी की तारीफ में। तो एक दिन क्या हुआ, ये मेरे पास आया और मुझे कहा कि गेट बजाया कि मुझे आपसे जरूरी मिलना है। क्या हो गया भाई? मुझे ले गया साइड पे और कहने लगा, यार मुझे किसी बुजुर्ग के हाथ पे बैत करा दो, मेरी तोबा कादियानी है इससे। तो मैंने कहा खैरियत, हम तो समझा समझा के तक गए। कह रहे भाई मैंने ऐसा वाकया देखा है, मेरा दिमाग के सारे तार ठीक हो गए हैं। कहा कि जो सेठ मुझे ऑफर कर रहा था ना, जो करोड़पति सेठ था, अपने घर में ले जाता, इज्जत देता, एक हफ्ता पहले यह हुआ कि मुझे उसने अपने कमरे में बिठाया, यानी जो जो भी गेस्ट रूम होता है वहां बिठाया, और कहीं किसी काम से अंदर गया अपने कमरे में, तो खोल ही नहीं रहा दरवाजा। इतना टाइम गुजर गया, हमने का पता नहीं क्या है, उसके बेटों को बुलाया, दरवाजा जब तोड़ा है खोला है, उसको हार्ट अटैक हुआ हुआ था, मुंह से झाग निकल रहा है खून और उल्टा पड़ा हुआ है। कह रहे उस वक्त मुझे लगा, यार ये दुनिया की तो दो टके की हैसियत नहीं है भाई, जो तुझे वीजा दिलवा रहा है यूके का और जो तुझे पैसों की और ऑफरें कर रहा है उसका अपना ये हाल है, एक सेकंड हुआ है उसको और गिरा है धड़ाम से, इतना हैंडसम स्मार्ट आदमी। तो कह रहे मैं क्या कर रहा हूं भाई इस दुनिया के पीछे। बात चीजें घंटों घंटों के बयानात में समझ में नहीं आती, चंद वाकयात वो असर कर देते हैं। कह रहा है वो लेकर गए, हॉस्पिटल एक्सपायर हो चुका था। और ये जो ज्यादा मालदार लोग होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा भाई, इनमें पैसे की हवस इतनी होती है कि मां बाप की मोहब्बत और गम भी ज्यादा नहीं होता। कह रहे उसके बेटों को इतना गम नहीं हो रहा, बाप की डेथ का मुझे गम ज्यादा हो रहा है। मैं ये मंजर भी देख रहा हूं कि यार इनके यहां तो मोहब्बत ही नहीं। हमारे बाप का कह रहे ऐसे इंतकाल हो जाए, हम तो 6 महीने टेंशन से रोते रोते पागल हो जाए, इन्हें कुछ हो ही नहीं रहा, इनका अब्बा मर गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ, बाकी कह रहे कोई नॉर्मल जायदादें मिल रही है ना। अब मैं नहीं कह रहा सारे मालदार ऐसे होते हैं, लेकिन ये बीमारी गरीबों की निस्बत मालदारों में ज्यादा है। दौलत की रेलपेल इतनी देखी होती है कि आपस के जो रिलेशन है उनकी वैल्यू 2% की नहीं रहती। जब एक आदमी अपने बाप को मां के मरने के बाद भी शादी नहीं करने दे रहा, करोड़पति बाप को, कि 12.5% मां के सौतेली मां के पास चला जाएगा, तो फिर आप उसकी हवस और मेंटल लेवल का अंदाजा लगा सकते। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बिल्डिंगों का मालिक है बाप, करोड़पति अरबपति, बेटे भी करोड़पति हैं, मां मर गई है, बाप को शादी नहीं करने दे रहे बेटे, बाप मुझे बता रहा है क्यों नहीं करने दे रहे, यार 8वां हिस्सा बेवा के पास चला जाएगा, वो 8वां भी हमें मिलना चाहिए, इस चक्कर में बाप का बेड़ा गरक कर रहे हैं। ये आपको गरीबों में नजर बोलो नहीं आएगा। तो इतना हवस, यार पैसा कमाओ मेरे भाई, लेकिन बच्चों की तरबियत तो करो यार, उनके दिल में पैसों की आपने क्यों मोहब्बत डाल दी है। हर वक्त बाप जब बेटों के सामने बिजनेस पैसा की बात करेगा तो बच्चा समझेगा अब्बा बाद में, बिजनेस पहले है। उसको अल्लाह रसूल सिखाओ मेरे भाई। मालदार पर ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की तरबियत करे वो, क्योंकि उसके बिगड़ने का इम्कान ज्यादा है। तो खैर कहता है जब मैंने ये मंजर देखा, फिर हम गए कब्रिस्तान में दफनाने, तो कह रहे मुझे ऐसा लगता है ये कब्र में नहीं डाल रही, आग में डाल रहे हैं उसको, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और मैं चीख रहा हूं कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो कहने लगा मुफ्ती साहब मेरा दिमाग क्या हो गया है। मुफ्ती साहब तो नहीं कहता था उस वक्त मुझे, जो भी तारिक भाई है जो भी कहता था, कह रहे मेरी सेटिंग क्या हो गई है, सेट हो गई है, अल्लाह ने मुझे इबरत दिखा दी भाई, ये दुनिया 2% की नहीं है। खैर मैंने उसको लेके किसी बुजुर्ग के हाथ पे बैत करवा दी। हम लोग क्या चुके बुजुर्ग होते हैं, बाज लोग कहते हैं बुजुर्ग बुजुर्ग होते ही नहीं है, सारे बाबे गलत बुजुर्ग गलत, तो वो बेचारे कुछ भी नहीं करते ना फिर ऐसे लोगों के। हम लोग के यहां अल्हम्दुलिल्लाह दो नंबर भी होते हैं बुजुर्ग, लेकिन एक नंबर भी होलसेल के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं। तो हम लोग तो फिर बुजुर्गों के, मैं भी बैठ हुआ किसी बुजुर्ग के हाथ पे जो आज मैं टूटी फूटी दीन की खिदमत कर रहा हूं। तो ये बुजुर्ग सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, क़यामत तक खत्म नहीं होगा। ये खत्म हो गया तो अल्लाह दुनिया को खत्म कर देगा। बाज़ लोग ऐसा बुजुर्गों के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा लगता है बुजुर्ग मार्केट में रहा ही नहीं है कोई। ये गलत है, समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे अंग्रेज जो है ना, अभी छोड़ो यार, अंग्रेज बहुत बोलेगा यार, तू हर बयान में हमारी वाट लगाता है यार। अब्बा की बात कर रहा था अंग्रेज, कि अंग्रेजों के अब्बा नहीं होते, हम लोग क्या क्या होते हैं? हम लोग क्या तो होते हैं भाई, हम लोग तो फादर डे थोड़ी मनाएंगे, क्योंकि हमारे यहां आपके, छोड़ो फिर ज्यादा हो जाती है, छोड़ो। कुछ बातें थी लेकिन अब हर बात नहीं बतानी चाहिए, बस मैं बयान समेट रहा हूं। तो ये मैंने आपको एक वाकया अजान का इसलिए सुनाया कि भाई वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, इज्जत असल में किसकी है? अल्लाह। तो कोई शरीयत का काम करते हुए आपको शर्म महसूस, दाढ़ी रख लो हिम्मत करके। लोग बोलेंगे मुल्ला मुल्ला भाई छोड़ो, किसी के किसी बात, आजकल टाइम भी नहीं है इतना, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है, किसी को आपकी दाढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। हिम्मत करके रख लो, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे। भाई क़यामत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाओगे तो बगैर दाढ़ी के खुश होंगे या दाढ़ी के खुश होंगे? अलबिदाया व निहाया की रिवायत है कि कुछ लोग नबी की खिदमत में आए किसरा के, चेहरे पे दाढ़ियां नहीं थी, आपने अपने चेहरे को मोड़ लिया और कहा तुम्हें ऐसी सूरत बनाने का किसने हुक्म दिया? उन्होंने कहा हमारे बादशाह ने। आपने फरमाया मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि हम दाढ़ियों को बढ़ाएं और मूछों को घटाएं। आज मूछों के मुकाबले हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो बात, पुलिस वाले देखो मूछें ज्यादा होती हैं, आदमी कम होता है उसमें। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, पुलिस वालों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं क्योंकि वो भी हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। जब भी देखा है पुलिस वालों को इज्जत ही दी है उन्होंने। अब आप लोग के साथ क्या सलूक होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है मजहबी लोगों के साथ दाढ़ी वालों को पुलिस वाले बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। ये एक मजहब की मोहब्बत की बहरहाल एक अलामत। तो मुझे बताया कि जी मूछों का अलाउंस अलग से मिलता है, वल्लाह आलम। तो भाई अलाउंस के चक्कर में अपने चेहरे को मत बिगाड़ो, रखो मूछे, रखना भी जायज है, लेकिन होंठ का ऊपर का किनारा खुला रखना लाजिम है। ऐसा ना हो कि आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें आपकी मूछे तैर रही हैं, और ये तो नजाफत के खिलाफ है ना। और दाढ़ी को शरीयत ने क्या हुक्म दिया? बढ़ाने का। हिम्मत करके बढ़ा लो भाई, लोग मुल्ला मुल्ला कहेंगे थोड़े दिन तक। हमें भी कितने ताने मिले थे, मैं तो जब मैं और हमारे दोस्त थे स्कूल के, दोनों ने साथ दाढ़ी रखी, तो वो एक साहब ने बुलाया बाकायदा मुझे भी और उसको भी, बुला के कहा कि ये तुम्हारी अभी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है, तुम लोगों की अभी तुम्हारी उम्र है, लाइफ को एंजॉय करो, जब बड़े हो जाओगे 50-55 साल के फिर जाके रख लेना। इस तरह से लोग देखो डीमोटिवेट करते हैं, हालांकि ये कह देता यार चलो बेटा हमने नहीं रखी, आपने हिम्मत कर ली। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी में बुराइयों को छोड़ो ना। दाढ़ी आपसे बहुत सारे गुना वैसे भी छुड़वा लेगी, बहुत सारे गुना छुड़वा लेगी। हमारे एक दोस्त सैनमा घर की लाइन में लगे हुए थे दाढ़ी रखने के बाद, दाढ़ी रख ली, फिल्म देखना नहीं छोड़ी, कह रहे मैं लाइन में लगा हुआ, जब बिल्कुल बारी आने वाली थी मैं निकल गया। मैंने कहा यार बहुत अजीब सा लग रहा है, सब बुढ़ बुढ़ के देख रहे हैं। अच्छा बाद लोग इसका लिए सोचते हैं कि चूंकि हम गुनाह नहीं छोड़ रहे तो दाढ़ी काट लेते हैं हम, ताकि दाढ़ी बदनाम ना हो। भाई ये गलत है, अगर आपसे कोई गुनाह नहीं छोड़ रहा तो दाढ़ी काटने का तो एक अलग गुनाह हो जाएगा। ये तो हम बुराइयां करते हैं तो इस्लाम भी तो बदनाम होता है ना, क्योंकि इस्लाम छोड़ दें हम, मुसलमानों की इज्जत है पूरी दुनिया में होगी, लेकिन पाकिस्तानियों की भी है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी नहीं है मतलब ये है अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा वो कह रहे हैं तो दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी हिम्मत करके क्या कर लो, रख लो, इसमें बेइज्जती नहीं है, इसमें क्या है, इज्जत है। बबर शेर लगता है आदमी, आफुल लिहा वकुस्सु शवारिब खालिफुल यहूद वन नसारा। बुहारी मुस्लिम की हदीस है कि यहूद और नसारा की मुखालफत करो, वो दाढ़ियां काटते हैं, तुम दाढ़ी बढ़ाओ। और औरत को भी दाढ़ी वाला आदमी अच्छा लगता है। आप कह सकते हो जी हमारी वाली तो नहीं पसंद करती कि दाढ़ी रखो, आप रख लो तो पसंद करेगी, कभी भी नहीं कहेगी कि इसको काटो। असल में खवातीन को लिबरल आदमी चाहिए, वो समझती है दाढ़ी रखे ना ये अजीब सा ना हो जाए, तो आप ना हो अजीब से, आप दाढ़ी रखो और वैसे ही रहो जैसे पहले थे, समझ रहे हैं? उनको ये डर होता है कि ये पता नहीं मुल्ला टाइप का बन गया, अब खामखा की सेक्शन लगाएगा, पाबंदियां, तो ना लगाओ भाई। आप बोलो भाई ये तो एक अल्लाह का हुक्म है और वैसे भी मर्द की फितरत है तो मैंने रख ली है, इसका हमारी बाकी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? वो एक दाढ़ी वाले अंकल जा रहे थे ना, हर चीज दाढ़ी पे डालते हैं ना लोग, दाढ़ी वाले अंकल जा रहे थे, किसी खातून को टक्कर हो गई, ड्राइविंग कर रहे थे, खातून ने फौरन कहा कि दाढ़ी रख के टक्कर मारते हो शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा मोहतरमा दाढ़ी है ब्रेक नहीं है, ये दाढ़ी रखे सब कुछ हो सकता है। तो हिम्मत करके मेरे भाई क्या कर लो, दाढ़ियां बढ़ा लो। लोग कहें कि मुल्ला बन गया, कहने दो भाई, ये भी मर जाएंगे और आपने भी मर जाना है, कब्र में सब बराबर हो जाएगा, कयामत के दिन दाढ़ी के साथ उठोगे अच्छे लगोगे, समझते हो? दुनिया में भी अच्छे लगोगे, चेहरे की रौनक आती है दाढ़ी रखने से। जितने भी नर जानवर हैं अल्लाह ने सबको चेहरे पे बाल दिए हैं, मुर्गा देख लो कलगी है कि नहीं है, और घने बाल, बड़े बड़े बाल होते हैं। मुर्गे ने पता चला माइकल जैक्सन का डांस देखा और कहा कि यार ये कैसा साफ सुथरा नजर आ रहा है, और ब्रेड लेके सारे बाल काट दिए अपने, कि मैं भी माइकल जैक्सन, अगर कोई ना बताता कि ये आदमी है तो हमें पता चलता कि ये आदमी है कि लेडी है कि बंदा है कि बंदी है, नहीं पता चलता ना, वो तो मीडिया ने बताया कि ये आदमी है, हमने मान लिया, वरना कोई उसके एटीट्यूड से नहीं लगता था, बिल्कुल साफ सुथरा। तो मुर्गा भी अगर ये मुतासिर हो जाए माइकल जैक्सन से और ब्लेड लेके बिल्कुल साफ सुथरा कि मैं मुर्गी जैसा लग रहा हूं, तो मुर्गी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मुर्गी कहेगी भाई तेरे स्टाइल ही चेंज हो गए हैं, वो रहा नहीं है। तो इसी तरह बकरे के बाल रखे हैं अल्लाह ने, बबर शेर के बाल रखेंगे नहीं रखे? अब बबर शेर और शेरी में फर्क किसका होता है? बबर शेर के चेहरे पे बाल होते हैं, रौनक होती है, और शेरनी के बाल नहीं होते। अब बबर शेर ने माइकल जैक्सन का डांस देखा, बोला यार ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है, ब्लेड लिए नाई के पास गया, शेरों का भी जो भी नाई होता होगा उसके पास जाके सारे बाल साफ करवा लिए। तो अब आप मुझे बताओ, शेरनी कहेगी तू पहला सा नहीं लगता तू पहला सा नहीं लगता, बताओ आज तब्दीली अचानक कैसे आई है, तू पहला सा नहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कहेगी बम का जमाना है उड़ा दो साले को। तो इसलिए भाई हिम्मत कर लो, और जितने भी शरीयत के अहकाम है, पार्टीशन कर लो बारात शादियों में, मर्दों को अलग कर लो, खवातीन को अलग। लोग कहेंगे भाई ये मौलाना टाइप के लोग हैं, क्या ये ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, लड़के लड़कियां मिक्स बैठे हुए हों, कोई नजर किसी की गंदी नहीं है, ये मौलवियों की घटिया गंदी सोच होते ना, मौलवी ये अंटी उधर बैठे अंटा उधर बैठे, ये आपस में मिक्स ना हो। अबे भाई ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लोग कह रहे होते हैं अबे साइंस बहुत आगे है, गोरा इन चीजों से क्या हो गया आजाद, तभी तो चांद और मिर्रीख पे पहुंच रहा है वो, और ये इन्हीं सोच में खवातीन उधर और पर्दा करें और मर्द उधर, अबे ये क्या मौलाना के मुल्ला लोगों के पास बैठता है वो, गोरा चांद पे तो पहुंच गया लेकिन अब्बा मार्केट से क्या हो गए, इन्हीं हरकतों की वजह से शार्ट हुए हैं, मिस गैदरिंग, फिर बेपर्दगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेगैरती बेहयाई, लड़कियों का घरों से भागना, एकदम थोड़ी हो जाता है। आप लोग हमें मिसाल दे रहे होते हैं फला जगह मिस गैदरिंग थी, देखो कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, ओ भाई एकदम नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी खराब होती है, अभी को एजुकेशन है, मिक्स गैदरिंग है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा, वही होगा एंड जो गोरे का हुआ है, अब्बा मार्केट से क्या हो जाएंगे शार्ट। तो इसलिए अल्लाह ने अब्बा को बचाने के लिए जो है ना ये सारा सेटअप बनाया है कि अब्बा नहीं निकले सोसाइटी से। इंसान और जानवरों में यही अब्बा ही का तो फर्क है, गधे में अब्बा नहीं होता, अम्मा सब गधे की होती है, अब्बा नहीं होता गधे में, बकरे बकरियों में अब्बा का पता चलता है नहीं पता चलता, तो मम्मा का तो सबको पता होता है। तो फर्क इंसानों में जानवरों में यही है कि इंसानों में अब्बा का भी पता होता है। खैर अल्लाह ताला हमें हिदायत और कल्चर के बजाय किसको फॉलो करने का हुक्म दिया जा रहा है, इस्लाम को, तो हमने इस्लाम में इज्जत तलाश करनी है, इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते में हमें इज्जत तलाश नहीं करनी। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तौहीद परस्तों पर क्या कैफियत होंगी बता दें, बताऊंगा। कसाई अगर मजूसी या फला हो, नाम फिरकों के नहीं लेता भाई मैं मेंबर पे, तो इनका ज़बीह क्या हुक्म में जायज नहीं है? ये जरूरी है कि ज़बह करने वाला अहले सुन्नत में से हो, तौहीद परस्त हो, और ईसाई और यहूदी का भी जायज है, लेकिन मुसलमान में अगर कोई तौहीद पर नहीं है तो फिर उसका ज़बीह हलाल नहीं है, क्योंकि वो अहले किताब के हुक्म में नहीं है। वो पूछना ये है कि बड़े जानवर की कुर्बानी के, जी अच्छा, बड़े जानवर की कुर्बानी के दो हिस्सों के अलावा बकिया पांच हिस्से बच्चों के अकीके के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, हमने भी अपनी गाय की कुर्बानी में बच्चे का अकीका भी रिमटाया है, ایک الگ حصہ لینا پڑے گا, ایسا نہیں کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کر لیں. میرے والد رقت کے مالک ہیں اور میں ساتھ کام کرتا ہوں, جتنا بھی پیسہ خرچ کرو تو والد صاحب حساب نہیں لیتے, تو میرے پر قربانی کرنا فرض ہے یا نہیں؟ اصل میں پیسے کے مالک تو والد صاحب ہی ہیں نا, آپ نہیں ہو, تو آپ کے پر قربانی لازم نہیں ہے. ابھی تو قربانی ہو گئی, اب کیا پوچھ رہے ہو؟ میری دادی بہت بیمار رہتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اذان ہونے سے پہلے ہی نماز ادا کر لیتی ہیں. کیا اذان سے پہلے نماز ہو جائے گی؟ اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو ہو جائے گی. آپ لوگوں میں کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے, یا بیٹھے بیٹھے بھی پوچھ سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں علیحدہ سے عقیقہ کر سکتے ہیں. گھر میں قربانی ہو اور بھائی کہیں کہیں کہ گاڑی کا کرایہ یا کٹائی کے پیسے یا جانور کے چارے کے پیسے دے دیں, کیا قربانی ہو جائے گی؟ جائز ہے, سب طرح سے جائز ہے. جس کا حصہ ڈل رہا ہے سارے پیسے اس کے لگنا ضروری نہیں ہے. پیسے کوئی اور لگا رہا ہے, نیت آپ کی کر رہا ہے آپ کو بتا کے, تو بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ میں کر رہا ہوں قربانی فلاں کی طرف سے, لیکن فلاں کو بتائے پہلے, وہ بتائے بغیر نہیں ہوگی, تاکہ اس کا وکیل بن جائیے, تو پھر بے شک پیسے کسی کے لگ رہے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قربانی کے جان میں بچوں کی عقیقہ ہوگا یا ایسا گھر کے فرد جن کا عقیقہ رہ گیا ہو کیا دنیا میں نقصان میں ہے؟ نہیں, عقیقہ کرنا لازم نہیں ہے, سنت عمل ہے, کوئی فرض نہیں ہے. عقیقہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, کر لینا بہتر ہے. اور قربانی کے جانور میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے عقیقے کا. قربانی کے پیسے نہ ہو, نہ قرضہ ہو اور گھر پر مشکل چل رہا ہو, تو اس بندے پر قربانی جائز ہے, لازم نہیں ہے. اس پر پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے کرے گا بیچارہ. میرے بھائی حج پر گئے ہیں, وہاں قربانی جو ہوگی تو کیا یہاں کراچی میں بھی ان کی قربانی کرنی ہوگی؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. حاجی لوگ یہاں بھی قربانی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, حج میں جو قربانی ہوتی ہے وہ بقرعید والی قربانی نہیں ہوتی, وہ دم والی قربانی ہوتی ہے. حج تمتو جو کرتا ہے نا, ایک ہی سفر میں حج بھی کیا عمرہ بھی کیا الگ الگ احرام سے, یا قران کر لیا, ایک ہی احرام سے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا, تو ایسے شخص پر شکرانے کی قربانی لازم ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک سفر میں دونوں عبادتوں کی توفیق دے دی. تو وہ جو قربانی شکرانے کی قربانی ہے وہ بقرعید والی اس سے واجب ادا نہیں ہوتا. بقرعید والی الگ سے لازم رہتی ہے دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, حاجی صاحب صاحب نصاب بھی ہوں, یعنی ان کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ الگ سے قربانی کر سکیں. دوسرا, وہ مسافر نہ ہو, یعنی مکہ میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو بقرعید کے دنوں میں. اگر ان دنوں میں مکہ کے اندر 15 دن سے پہلے پہلے موو کرنے کا پروگرام ہے تو پھر مسافر پہ قربانی لازم نہیں ہوتی. کر دے تو اچھی بات ہے, نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب, میری نانی کا گھر ہے جس پر لڑائی ہو رہی ہے. میرے چھوٹے ماموں اور والدہ چاہتی ہیں گھر میں تقسیم ہو جائے, بڑے ماموں نہیں چاہتے تقسیم ہو. میرے نانا کا انتقال ہو چکا ہے, نانی کا گھر ہے, لڑائی ہو رہی ہے. میرے چھوٹے ماموں اور میری والدہ چاہتی ہیں گھر تقسیم ہو جائے. بھائی, جس میں وارثوں کا حصہ ہے ان کو تقسیم کر کے دینا پڑے گا. میں وراثت کو روک لینا یہ ظلم ہے, گناہ ہے بہت بڑا. اچھا بھائی, جب بھی کراچی میں طوفان آتا ہے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے عبداللہ شہزادی کی وجہ سے طوفان رکا ہوا ہے. بالکل غلط بات ہے, کسی کی وجہ سے نہیں رکا ہوا, اللہ نے رکا ہوا ہے. عبداللہ شہزادی یا کوئی بھی بزرگ ہو, وہ تو بےچارے قبر میں کروٹ نہیں لے سکتے. جس کروٹ پہ لٹا دو اسی پہ ہی قیامت آ جائے گی, ہلیں گے نہیں, تو طوفان کہاں سے روکیں گے بھائی؟ طوفان روکنے کے لیے چھت پہ بیگم کو بھیج دیا کریں, کیونکہ طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے. سمجھے؟ وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن آ گیا, تو کسی نے بتایا بھابھی پہ جن آیا, اس نے کہا خود ہی نمٹے گا, خود ہی بھگتے گا بھائی, کیوں آیا تو؟ مفتی صاحب, میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پھر اس کو کہا لکھ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. بس قلم نے لکھا اور جو کچھ ہوتا تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے, کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے. کوئی مومن ہوتا ہے, کوئی کافر ہوتا ہے, تو ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کسی کا خاتمہ کفر ہوئی تھی ایمان پر. یہ میں تقدیر کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. بار بار ابھی ایک ہی مسئلہ ریپیٹ کرتا رہوں گا تو اچھا نہیں ہے نا, اس میں ٹائم بھی بہت لگ جاتا ہے, سارا ٹائم اسی مسئلے کو بیان کرنے میں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا پورا ڈیٹیل سے. اچھا, یہ میں ایک حدیث بیان کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے قلم کو بنایا اور اس سے کہا لکھ سبقت رحمتی علی غضبی. بعد میں کسی نے توجہ دلائی کہ سبقہ کا صلہ علی نہیں آتا, سبقتہ آتا ہے نا. مجھے بھی پھر بعد میں خیال گیا تو وہ حدیث میں سبقت رحمتی غضبی ہے, علی کا لفظ نہیں ہے اس میں. وہ غلطی سے بائی مسٹیک میں نے اعلیٰ کا لفظ بڑھا دیا. حدیث کے الفاظ ہیں سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی. مفتی صاحب مشرک بھائی جو غیر اللہ سے مدد کا قائل ہو اور دعاؤں کا قائل ہو, اس کے گھر قربانی کا گوشت آئے گھر سے آئے تو کیا کھانا جائز ہے؟ اگر اس نے خود ذبح کیا ہے تو مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اگر ذبح کسی اور نے کیا مسلمان نے کیا تو پھر حلال ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گوشت کا مالک کون ہے, جانور کا مالک کون ہے, گوشت کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے. ذبح اگر مسلمانوں میں کوئی مشرک کرے گا, جو کہ مسلمان ہوتا نہیں ہے, مشرک کہاں سے مسلمان ہو گیا, تو شرک کرنے والے کا ذبیحہ قبول نہیں ہے, سوائے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی, وہ اللہ نے مستثنی کیے ہیں. کسی وجہ سے اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو کچھ پروٹوکول دیا ہے اہل کتاب ہونے کی بیس پہ, ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے, ان کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال ہے اگرچہ وہ مشرک ہوں. لیکن مسلمانوں میں کوئی شرک کرے گا تو اس کو پروٹوکول نہیں دیا ہے, کیونکہ وہ تو اسلام میں پیدا ہوا نا, وہ تو توحید کے ماحول میں پلا بڑا ہے, وہ کیسے شرک کر رہا ہے؟ تو اس کا جرم یہود و نصارہ کے جرم سے بڑا جرم ہے. نہیں یار یہ بات, یعنی اس کا جرم بڑا ہے, لہذا اس کی عورت سے نکاح بھی حلال نہیں ہے اگر کوئی مسلمانوں میں شرک کرتا ہے. وہ عورت اگر شرک کرتی ہے تو اس سے بھی نکاح حلال, یعنی کسی کی بہن بیٹی سے اگر وہ خود لڑکی شرک کرتی ہے تو اس سے بھی نکاح حلال نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو دو چیزوں میں بہت خیال کرنا ضروری ہے, جس کا عقیدہ شرکیہ ہو لیکن وہ تاویل نہ ہو, بالکل پکا ڈھکا شرکیہ, واضح لفظوں میں کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, مختار کل ہیں, مشکل کشا ہیں, جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں, واضح لفظوں میں اس طرح کی بات کرتا ہو تو وہ پھر اسلام سے خارج ہے. تو اس کوئی خاتون ہو تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں, کوئی مرد ہو تو عورت کے لیے بھی اس سے نکاح جائز نہیں, اس کا ذبیحہ بھی کیا ہے جائز نہیں ہے. لیکن اس میں شک وہم نہ کریں, پکا ڈھکا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تھوڑا پانی بھی پلا دیں ذرا. جمعے کے دن میں بول بول کے میرے بالکل گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو اب میں کھانا کھاؤں گا تو کھانا میں نہیں کھاؤں گا, میں رات کا کھانا, کیونکہ میں نے پھوڑ دیے پراٹھے, اور جمعے کو ناشتہ بھی ہم دیر سے کرتے ہیں, تو دیر سے ناشتہ پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوں, پھر ابھی دوپہر بھی کھا لیا, پھر رات بھی کھا لیا, تو ایک دن دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جائے گی, اخبار میں آ جائیں گے, اور وجہ موت کوئی اچھی ہوگی نہیں, آدمی شہید ہو کوئی اچھا لگتا ہے, تو وجہ موت پراٹھے ہوں, جو میڈیکل رپورٹ بنے کہ کیوں مرے, کہ جی اس دن پراٹھے بھی کھائے تھے, پھر دوپہر بھی پھوڑا, پھر رات کو بھی پھوڑا, اس لیے مر گئے, تو کوئی اچھی موت, قیامت میں کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے, اللہ کہیں کسی اور وجہ سے مرتا. تو پھر اس کا حل میں نے یہ رکھا ہے, جب دوپہر کو کھانا نہیں تو تھوڑی سی چائے پی لیتا ہے, چائے بھی اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ تسلی ہو جاتی ہے, رات تک آدمی چل لیتا ہے آرام سے. ویسے میڈیکلی میں آپ کو بتاؤں, رات کے کھانے سے دوپہر کا کھانا بہتر ہے. آپ رات کو کھانے کا ناغہ کر لیں, دوپہر کو نہ کریں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ رات کو جتنا پیٹ خالی رہے گا نا اتنا صحت کے لیے اچھا ہے. دن میں سن لائٹ جو ہے نا یہ بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے, تو صبح بھی پھوڑ دیں اور دوپہر بھی پھوڑ دیں, رات کو ہلکا ہاتھ رکھیں. لیکن اب چونکہ رات کو دعوت ہے اور دعوت بھی اپنی قریبی رشتے داروں میں ہے, تو پھر وہ مجبوری ہے کھانا وہاں جا کے نہیں کھاؤ تو ناراض ہوتے ہیں, تو پھر ہم نے کہا کہ چلو دوپہر نہیں کھاؤ, کیونکہ وہاں بھی جا کے پھوڑو یہاں بھی پھوڑو تو وہی دھماکہ شماکہ. اور جو لوگ بلا وجہ کھاتے ہیں ان کے الگ سے بھی کچھ مخصوص قسم کے دھماکے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. آپ دیکھیں جو ماحول خراب کرتے ہیں وہ لوگ, ہر وقت جو پھوڑتے رہتے ہیں نا, تو نہیں بیٹھ سکتے آپ ان کے ساتھ. یعنی ایک دھماکہ تو وہ ہوگا جب وہ مریں گے, اس سے پہلے بھی دوسروں کو بہت سے لوگوں کو مار چکے ہوتے ہیں وہ اپنے دھماکوں کے ذریعے. اچھا میرے بھائی یہ ہو گیا مسئلہ. میری پیمپر, میں ابھی پیمپر کی دکان کر رہا ہوں, اچھا پنچر کی دکان کر رہا ہوں. اتنی میٹھی چائے یار میں تو نہیں پی رہا بھائی, یہ تو پورا شیرہ بنی ہوئی ہے, گلوکوز لیول اتنا بھی نہیں بڑھانا نا یار. ان کو بولیں کسی کو کہ نا اس کو ذرا صحیح طرح تمیز سے بنوا لیں, تو تھوڑا اس میں چینی کم کروا دیں اور پتی کو ذرا ڈال کے اور ذرا تمیز والی بنائیں, اس کو پتی نہیں ہے. میں پنچر کی دکان کر رہا ہوں, اس میں اگر میٹر سے بجلی استعمال کریں تو بل بہت زیادہ آئے گا, کنڈے کی بجلی استعمال کر سکتا ہوں, چائنا کٹنگ میں گھر لینا جائز ہے یا نہیں, देखो कुंडे की बिजली तो इस्तेमाल करना जायज नहीं है, हाँ गवर्नमेंट की परमिशन से, के इलेक्ट्रिक वालों की परमिशन से बाज दफा लोग कुंडा लगाते हैं तो फिर वो महीने का एक स्पेसिफिक बिल दे रहे होते हैं, वो तो चूंकि उनकी परमिशन से तो वो जायज है, लेकिन नॉर्मली कुंडे की बिजली इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अलबत्ता उससे जो पंचर का कारोबार चलेगा वो कारोबार हराम नहीं हो जाएगा, समझते हैं, वो कारोबार हराम नहीं होगा, क्योंकि कारोबार जो हो रहा है वो तो पंचर लगाने का हो रहा है ना, पैसे जो आपको मिल रहे हैं किस चीज के मिल रहे हैं, पंचर के लिए मिल रहे हैं, तो वो नाजायज नहीं होगा। एक काम गलत हो रहा है कि बिजली चोरी क्यों कर रहे हैं, ये गलत काम हो रहा है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जो जूसर मशीनें लेके बैठे हुए हैं, फलों के जूस बेच रहे हैं, वो भी कुंडे की बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल कुंडे की बिजली ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वजह से उनका जूस का कारोबार हराम नहीं हो जाएगा, क्योंकि पैसे किस चीज के ले रहे हैं, वो जो आपको जूस बना के देता है उसमें आम है, केला है और ये सब चीजों को मिक्स करके जो चीजें जो दे रहा है ना, तो उसके उसके पैसे हैं, तो लिहाजा ये काम मुफ्तियों का होता है कि वो बताएं कि इसमें हराम कितना शामिल है कितना, ये बिल्कुल यूट्यूब की अर्निंग वाली बात है। अब लोग फतवा दे देते हैं ना, एक मौली साहब का मैं कुछ दिन पहले एक क्लिप देख रहा था, उन्होंने टीवी में कहा कि यूट्यूब की अर्निंग बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि इसमें गैर शरी इश्तिहार चलते हैं। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं इन मौली साहब से कहूं कि आप जो टेलीविजन में गए हैं आपको भी इस प्रोग्राम के पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये टीवी वाले पैसे कमा कहां से रहे हैं, इश्तिहारात से ही तो कमा रहे हैं, तो जिस तरह के इश्तिहारात यूट्यूब पे चल रहे हैं उसी तरह के टीवी पे भी चल रहे हैं, बल्कि टीवी पे ज्यादा बेहुदा चल रहे हैं, क्योंकि YouTube में तो फिर भी YouTube कंटेंट देखता है, मजहबी कंटेंट है तो उसके लिहाज से आमतौर पर चलाता है कंटेंट। अगर मेडिकल आप डॉक्टरों के वीडियोस देखें उसमें आमतौर पर मेडिसिन के इश्तिहारात चल रहे होते हैं, तो YouTube भी देखता है ना कि ये जो व्यूज हैं ये क्या चाहते हैं देखना, फिर भी उसमें फोश भी आ जाते हैं। तो मुझे ख्याल हुआ कि बाज लोग क्या करते हैं कि भाई वो एक चीज के तमाम पहलुओं से गौर नहीं करते बस वो, तो इसलिए जो बाकायदा सर्टिफाइड मुफ्ती होते हैं ना, जिन्होंने बाकायदा फतवे का काम किया, वो मसाइल उन्हीं से पूछने चाहिए। तो वहां टीवी में जो अर्निंग हो रही है एडवर्टाइजमेंट की हो रही है, तो वो अर्निंग भी हलाल है, इस बेस पे हलाल है कि जो एडवर्टाइज जो पैसे उनको मिल रहे हैं वो लड़कियां दिखाने के नहीं मिल रहे, पैसे उनको उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बात, शैंपू का इश्तिहार होगा, साबुन का इश्तिहार होगा या और किसी चीज का, तो वो पैसे जो बेसिक उनको मिल रहा है ना वो आप उसकी प्रोडक्ट को प्रोमोट कर रहे हैं। हाँ किसी फिल्म का इश्तिहार है, शराब का इश्तिहार है, उसकी अर्निंग हराम होगी, क्योंकि शराब को प्रमोट करना ये भी हराम है और इसके एवज में जो पैसे मिल रहे हैं वो भी हराम है। इसकी मिसाल है आप मोबाइल शॉप पे किसी लड़की को बिठा देते हैं मोबाइल बेचने के लिए, गलत अमल किया ना आपने, लेकिन इससे आपकी मोबाइल का बिजनेस हराम नहीं हो जाता, बेहयाई फैलाने का गुनाह होगा आपको कि लड़कियों को, जवान लड़कियों को आप क्यों बिठा रहे हैं बगैर पर्दे के। बाज लोग ये काम करते हैं कि दुकान पे चल नहीं रहा अंकल बिठा दिए थे मोबाइल बिक नहीं रहा, किसी से आंटी उधार ली उनको दुकान पे ले जाके बिठा दिए, आंटी भी बड़ी अट्रैक्टिव सी और अधूरे कपड़े, सारा क्राउड उन्हीं की शॉप पे। तो अब इसमें भी किसी भी मुफ्ती से आप पूछेंगे वो कहेंगे ये अमल तो हराम है, नाजायज है, बेहयाई फैला रहे हैं आप, लेकिन इसकी वजह से मोबाइल की अर्निंग हराम नहीं होगी, क्योंकि पैसे लड़कियों के नहीं दिए जा रहे, पैसे तो उस मोबाइल के दिए जा रहे हैं ना, वही आईफोन वो उस दुकान से खरीदता 3 लाख का, इस दुकान पे भी कितने का है 3 लाख का ही है, तो पैसे 3 लाख ही आईफोन ही के मिल रहे हैं, सैमसंग के मिल रहे हैं या और किसी कंपनी के मिल रहे हैं, समझते हैं कि नहीं समझते। ये अमल बहरहाल नाजायज है कि आपने लड़की बिठा के बेहयाई क्यों फैला रहे हैं, समझते हो, तो नाजायज भी उसके लिए जो बिठा रहा है, जो बिठा नहीं रहा उसके लिए तो ये भी नाजायज नहीं है। तो यूट्यूब पे जब आपके एड चलते हैं तो आप थोड़ी चला रहे हो, चला कौन रहा है, YouTube चला रहा है ना, आपके मशवरे पे चला रहा है ना आपकी तरगीब पे चला रहा है। तो YouTube वालों से हमारी मुलाकात हुई तो हम उनसे कहेंगे कि YouTube पे आप ऐसे फोर्स इश्तिहार ना चलाएं, ये बुरी बात है, लेकिन ना उस इश्तिहार की आमदन हराम है, ना उन एड के लिए जगह देना हराम है, क्योंकि आपने जो जगह दी है वो जगह कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए दी है। जैसे आपने किसी को अपनी दुकान किराए पे दी है मोबाइल बेचने के लिए या गुले गंडे के लिए दी है, अब उसने लड़कियां ला के बिठा दी तो ना आपके से पूछ के बिठाई है ना उसकी निस्बत आपकी तरफ होगी, जिसने बिठाई है उसको कहा जाएगा। तो YouTube चूंकि कोई 4 महीने तो लगे भी नहीं YouTube वालों के तबलीग में कि वो शरी मसाइल का ख्याल करें, तो जब लग जाएंगे तो फिर वो भी इस चीज का ख्याल करेंगे, तो जब तक ख्याल नहीं करते तो ये पूरी कौम के लिए, एक लाखों लोगों के लिए रोजगार को हराम करार देना, ये कोई यानी ये उस वो मुफ्ती तो मेरा ख्याल है ये बात कह सकता है जो बेचारा बंद कमरे में बैठा हो, जिसको पता ही ना हो या जिसको फतवे में को बहुत ज्यादा महारत ना हो, लेकिन जिनको महारत होती है सुबह शाम मसाइल देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, फिर कौम की जरूरत को भी देखते हैं। अब आप एक ये पहलू भी है इसमें कि पाकिस्तान वैसे ही गुर्बत के दलदल में फंसा जा रहा है, तो इस वक्त तो जितने भी माहिरीन मईशत से मैं मिला हूं वो कहते हैं जब तक बाहर का पैसा नहीं आएगा आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो बाहर का पैसा जो रेमिडेंस के नाम पे रकमें आती है ना, ये सबसे बेहतरीन जरिया इसका यूट्यूब है, डॉलर आते हैं इसमें, तो इससे आपका मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप यूट्यूब की अर्निंग को हराम कह के, बाद लोग बैठे हैं स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, कोई लेना देना किसी से कुछ भी नहीं है, बस बैठ के फतवे, कुछ लोग तो बेचारे मुखलिस हैं उनको वो हराम कहते हैं अपने इखलास से, लेकिन उनकी इल्मी रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं है, फतवे का काम प्रॉपर करते नहीं है, हर चीज के माहिरीन होते हैं ना। देखें एक डॉक्टर अभी MBBS करके फारिग हुआ है तो क्या फॉरन क्लिनिक हवाले कर दी जाती है उसके? वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करता तो उसको डॉक्टर समझा नहीं जाता। इसी तरह मुफ्तियाने किराम का एक पूरा प्रोसेस होता है, कोर्स होता है, फिर उसके बाद कई साल माहिर मुफ्तियों की निगरानी में बैठ के फतवे का बाकायदा काम करना पड़ता है, उसके बाद जाके मसाइल की तहकीक की सलाहियत पैदा होती है। ये ऐसा ही नहीं है कोई भी बुखारी की हदीस नंबर फलां और मुस्लिम की हदीस नंबर फलां और कुरान की आयत बैठ रेफरेंस देके फतवा देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पहलुओं पे गौर करके एक जो सही मुफ्ती होगा वो फतवा देगा। तो अब यहां पर भी यही मसला हुआ है कि बाज लोगों ने बैठ के यूट्यूब की अर्निंग हराम है और नाजायज है और बेहयाई फैलाने का जरिया है, तो ये देख नहीं रहे होते कि इसका असर क्या पड़ेगा पीछे। तो बेहयाई हराम है, हराम रहेगी, इसको फैलाना भी गुनाह है, लेकिन जो फैलाने वाला है उसकी तरफ निस्बत की जाएगी। तो आपने YouTube को जैसे आप किसी को अपनी दुकान देते हैं या अपना घर किराए पर रहने के लिए देते हैं, वो उसमें अगर कोई फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, तो आपने दिया है रिहाइश के लिए, तो बेसिक चीज क्या है? हाँ, शराब खाना खोल के दे दिया वो हराम होगा, आपने रहने के लिए दिया है, उसमें जो चीजें कर रहा है वो एक आरिज है। तो आपने भी यूट्यूब को जब अपना चैनल मोनिटाइजेशन करके दे दिया तो बेसिकली आपने कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए दिया है। अब उसमें वो प्रोमोट करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत करते हैं, इसको सही नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस गलत की निस्बत आपकी तरफ नहीं होगी बल्कि उनकी तरफ होगी। तो इसमें एक आखिरी बात जो बड़े बात संजीदा उलमा ने भी ये बात उठाई है कि तकवे का तकाजा किया है। भाई तकवा का तो तकाजा यही है ना कि एहतियात पर अमल किया जाए। तो देखें तकवे में दो पहलू हैं यहां पे। एक पहलू से तो तकवे का तकाजा ये कि मोनिटाइजेशन ना की जाए, क्योंकि बाल इश्तेहार में लड़कियां आती हैं, इस पहलू से तो सीधी सी बात है कि आप फ्री फोकट में चलाएं अपना चैनल। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि अगर आप दीनी चैनलों को मोनिटाइजेशन में आप उनकी हौसला शिकनी करेंगे कि आप मोनिटाइज ना करें, तकवे का तकाजा ये है, तो बेदीन लोग वो तकवा तो देखते ही नहीं है, वो मोनिटाइज करवाएंगे धड़ाधड़ और उनको मोटिवेशन मिलेगी उस अर्निंग की वजह से। तो बेदीनी की बात मिलियंस लोगों तक पहुंचेगी और दीन की बात बहुत कम लोगों तक पहुंचेगी। तो मीडिया में तो वार ही यही है, जंग ही यही है कि किसकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो एक पहलू को देखा जा रहा है कि उसमें बेहयाई आ रही है, दूसरे पहलू को नहीं देखा जा रहा कि मोनिटाइजेशन की वजह से, क्योंकि हमने सबको इजाजत दी हुई है मोनिटाइज भी कराओ भाई पैसे भी कमाओ। अगर हम ये इजाजत ना देते तो कितने बड़े बड़े मशहूर स्कॉलर्स हैं वो यूट्यूब से गायब हो गए, वो उनकी बात जितनी फैलनी चाहिए थी उतनी फैली नहीं है। तो होता ही है कि आपकी बात को लोग पैसों की लालच में आगे फैला देते हैं। तो कोई बात नहीं यार, आखिरत के लिए फैलाओ, पैसों के लिए फैलाओ, फैलाओ तो सही ना, फैलेगी तो ना बात उसमें। और दूसरी बात यह है कि पैसे कमाने की नीयत और अल्लाह की रजा, ये दोनों जमा हो सकती हैं, ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मोटिवेट करने के लिए मैदान जंग में कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जिसने फला काफिर को कत्ल किया, जो दुश्मन है इस्लाम का, तो जितना उसके पास माल होगा सारा कातिल का, तो सहाबा को जज्बा मिलता था। अब जिहाद भी हो रहा है और उसमें नियत यह भी हो रही है हौसला अफजाई के लिए कि भाई मैंने अगर कत्ल कर दिया तो उसके पास जितना माल होगा किसको मिलेगा, मेरा। तो बहुत से सहाबा ने कहा कि चलो माश भी हो रहा है और सवाब भी मिल रहा है। तो एक आदमी पान गुटके बेच के पैसा कमाता है, एक आदमी चोरी करके पैसा कमाता है, उससे बेहतर नहीं है कि वो इस्लाम की तबलीग भी हो जाए, अच्छी बात भी दुनिया में फैल जाए और आपकी एक मंथली अर्निंग भी हो जाए ताकि आपको कमाने के दूसरे तरीके इख्तियार ना करने पड़े। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसलिए मैं कहता हूं दीनी चैनलों को मोनिटाइज भी करें, उससे पैसा भी कमाएं, آپ ایک غلط چیز کو بھی تو سورس آف انکم بنا سکتے تھے نا. آپ نے اسلام کی تبلیغ کو بنا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہیں گے قرآن کو بیچ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہودی جو تھے وہ اللہ کے دین کو بیچ کے پیسہ کماتے تھے, دین کے ذریعے پیسہ کماتے تھے. تو یہودی کیا کرتے تھے, دین میں تحریف کر کے پیسہ کماتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب نے کہا نا کہ یہ جو مولانا لوگ تنخواہیں لیتے ہیں, امامت کی تنخواہ لیتے ہیں, اذان کی تنخواہ لیتے ہیں, قرآن تو کہہ رہے لا تشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا, میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. دیکھو یہودیوں کو قرآن کہہ رہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے تھے, یہ مولانا لوگ بھی نماز میں قرآن پڑھنے کے پیسے لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں نا. تو مولانا امین صفد رکاڑوی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے بڑا اچھا جواب دیتے تھے. انہوں نے کہا جب بھی کوئی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھے نا تو اس سے کہو یہ قرآن تم نے کہاں سے خریدا ہے, کیونکہ فلاں جگہ سے. انہوں نے کہا اللہ کہہ رہے میری آیتیں نہ بیچو اور دکاندار نے پورا قرآن تمہیں بیچ دیا, اس کو یہ آیت کیوں نہیں پڑھ کے سنائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. پورا قرآن بیچ دیا ہدیے کے نام پہ, اس کی قیمت لے لی. ہے تو وہ قیمت ہی نا, اس کو کہا ہدیہ جاتا ہے احترامن, ہے تو قیمت ہی, اس کو کیوں نہیں سنائیے؟ مولوی کو, مولویوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی ہر آیت کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جو علماء کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع کے لیے. تو یہودی جو اللہ کی آیات کو بیچتے تھے وہ تحریف کرتے تھے, صحیح مسئلہ نہیں بتا رہے, غلط بتا رہے ہیں تاکہ لوگ خوش ہوں اور ان کو نذرانے دیں. آج بھی ایسے اسکالرز موجود ہیں حق نہیں بیان کرتے تاکہ لوگوں سے ہدیے نذرانے بند نہ. ان کو پتا ہے ہم نے صحیح توحید بیان کر دی لوگ بھاگ جائیں گے, صحیح عقیدہ بیان کر دیا لوگ بھاگ جائیں گے, تین طلاق کو تین کہہ دیا لوگ بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا تین کو ایک بولو تاکہ لوگ کیا ہے آتے رہیں. تو یہ تحریفیں آج بھی ہوتی ہیں, کوئی عزت کے لیے تحریف کرتا ہے, کوئی پیسوں کے لیے تحریف کرتا ہے. تو یہ تحریف مراد ہے قرآن مجید میں. تو اگر کوئی دینی چینل کو مونیٹائز کرتا ہے کہ یار میں دوسرا بھی اس کی ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس پہ اجر کیوں مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا حرام طریقے سے خواہش پوری کرتا, زنا کرتا تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ملتا. تو فرمایا کہ اس نے گناہ سے بچ کے کدھر جا رہا ہے حلال. تو فرمایا یہ عجیب بات ہے, تم حلال چھوڑ کے برائی کی طرف جاتا تو اس کو برائی کاؤنٹ کرتے, برائی چھوڑ کے حلال کی طرف آ رہا تو اس کو اچھائی کاؤنٹ نہیں کر رہے. یعنی نبی نے خود صحابہ پہ اشکال کیا کہ ایک آدمی حلال چھوڑ کے برائی کی طرف جاتا, زنا کی طرف جاتا تو اس کو تو تم کاؤنٹ کرتے گناہ مل رہا ہے, وہ برائی چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے؟ حلال کی طرف جا رہا ہے کہ میں جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں گا, تو اس کو تم اچھائی کاؤنٹ نہیں کر رہے, اچھائی پہ ثواب ملتا ہے نا. تو اسی طرح کوئی مونیٹائز کر کے دینی چینل اگر پیسے کما رہا ہے تو پیسوں کی نیت بھی کرے اور یہ نیت بھی کرے کہ یا اللہ میں غلط طریقے سے بھی پیسے کما سکتا تھا, برائی کو پروموٹ کر کے بھی کما سکتا تھا, پان گٹکے سگریٹ کے ذریعے بھی کما سکتا تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذریعہ آمدن ایسا بناؤں جس میں تیرے دین کی تبلیغ بھی ہو, کوئی اچھا کام ہو. اس کی مثال ایسے ہے, ایک ڈاکٹر لوگوں کا علاج کر کے پیسے لیتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں یار آپ پیسے تو لیں لیکن نیت انسانیت کی خدمت کی بھی کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جان بچانے کا ثواب ملے گا, کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے انسانیت کی جان بچائی اس نے, ہے نا. تو چاہے فری میں بچائی ہو چاہے پیسے لے کے بچائی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نیت کیا کرے, پیسوں کے ساتھ آخرت کی نیت بھی کرے. اب ایک ڈاکٹر لوگوں کی جان بچا رہا ہے, اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں, ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ میڈیکل سائنس کے علاوہ بھی تو کوئی شعبہ اختیار کر سکتے تھے نا پیسہ کمانے کے, تو آپ ایک اچھے شعبے کو آپ نے اختیار کیا جس میں انسانیت کا فائدہ ہے, تو اس میں نیت تبدیل کر لیں گے تو انشاءاللہ پیسوں کے ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ اس میں اگر رزق بھی ہوگا تو یہ کام دل جمی سے کرتا ہے انسان. بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہیں آج کل جو آپ پڑھاتے ہیں آن لائن, اس میں بھی تنخواہ لیا کریں. وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ تنخواہ نہیں لیں گے آپ پابند نہیں ہوں گے, آپ کو موٹیویشن کچھ تو ملے گی اور پابندی نہیں ہوگی آپ کو, تو اس کے نتیجے میں نقصان دین کا ہوگا. جب آپ تنخواہ لے کے پڑھائیں گے تو آپ پابند ہوں گے, آپ نازہ نہیں کر پائیں گے. تو اخلاص کا ایک درجہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, وہ یہ کہ کچھ بھی نہ لیں اور دین کی خدمت کریں آپ, یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. یہ والا درجہ آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اعلی درجے کے چکر میں درمیانہ درجہ بھی نہیں ہوتا. تو اصل تو یہی ہے کہ کچھ بھی نہ لیں اور اعلیٰ درجے کے دین کی خدمت کریں, لیکن یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. یہ والا ہے, بہت کم لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ بہت سارا کام کر رہے ہیں, لیکن پھر آگے ان کے بھی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, وہ کام کرنا تو چاہتے ہیں ہو نہیں پاتا, ملازمین چاہیے, ان کی تنخواہیں دینی ہیں. اب آپ یوٹیوب پہ کام کرنا شروع کریں تو ایک پورا آپ کا آفس ہوگا نا, آپ کا ایک پورا لوگ ہوں گے, تو آپ ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو چندوں پہ چلیں گے آپ. پھر لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا دینی چینل مونیٹائز کرو تو لوگوں کے تانے, نہیں کرو تو لوگوں کے تانے. میں جب کہتا ہوں نا یوٹیوب کی آمدن جائز ہے, نیچے بہت سے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں فلاں نے تو مونیٹائز نہیں کیا, وہ اخلاص سے کام کر رہا ہے اور یہ مولویوں کے مزے لگ گئے ہیں, اپنے لیے انہوں نے کیا کر دیا جائز. حالانکہ ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اس وقت دیا تھا جب ہمارا چینل نہ مونیٹائز تھا نہ ہمارا دور دور کا کوئی ارادہ تھا. مجھے لوگ کہتے تھے مونیٹائز کریں, میں کہتا نہیں کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا خیال یہ تھا کہ اس میں ہم جو بیان کر رہے ہیں لوگوں سے پیسے آ رہے ہیں, مجھے پوری ڈیٹیل نہیں تھی. پھر ہم نے کہا یار یہ لوگوں کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بیان تو ابھی بھی فری میں ہی جا رہا ہے. تو پھر ہمارا جو اتنا عملہ ہے اس کی چندے لے کے ان کی تنخواہیں پوری کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ بھائی آپ وہ کام کر لیں جو ایک پراپر وے میں ایک لیگل کام ہو جائے گا؟ تو ہم نے اپنے لیے اس کو جائز قرار نہیں دیا, لوگوں کے لیے جائز قرار دیا ہے, پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا. تو میرے بیان پہ لوگوں نے کمنٹس, ایک مولوی صاحب نے ٹی وی چینل پہ بیان کیا یہ ارننگ حرام ہے, لوگوں نے ان کی بھی نیگیٹو کمنٹس کہ چونکہ ان کا اپنا چینل نہیں ہے نا اس لیے ان کے لیے کیا ہے حرام ہے, اور لوگوں پہ رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں یہ مولوی ہے. میں نے کہا یار جب حلال کا ہو تو بھی طنز اور حرام کا ہو تو بھی طنز, تو گدے والا لطیفہ ہی ہے پھر ایسے موقع کے لیے. گدے والا لطیفہ, وہ لطیفہ میں سناتا ہوں, لیکن ایک ٹیکنیکل بوائز بات اور بھی کر لوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چینل کی ارننگ اگر حرام بھی ہو تو بے حیائی تو آپ پھیلا رہے ہیں نا, اس کا ایک جواب تو میں نے پہلے دیا کہ اس میں نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس کا چینل ہے, بلکہ نسبت اس کمپنی کی طرف ہوگی جس نے یہ اشتہار بنایا. جیسے آپ نے دکان کرائے پر دی, اب اس نے کسی کو لڑکی کو لا کے بٹھا دیا, تو جو بٹھائے گا اس کی طرف نسبت ہوگی, آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے حیائی والا کی بات اس وقت بھی درست ہوتی جب یوٹیوب پہ بے حیائی نہ ہوتی, صرف آپ کے چینل پہ ہی ایڈورٹائز آ رہے ہوتے ہیں. اب بے حیائی کا جو لیول ہے نا وہ لوگوں کا اتنا بلند ہو چکا ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں, دیکھو کہیں کسی شخص کو کوئی لڑکی کی تصویر دیکھنے کو نہ ملتی ہوتی تو وہ شیمپو کی بوتلوں پہ جا کے دیکھتا, جو ٹھڑکی نوجوان ہے, ایسا ہی ہے نا. ہم جس آدمی نے دکان پہ بوتل رکھی ہوئی ہے اس کو جا کے کہتے ہیں کہ تو شیمپو کا بزنس چھوڑ دے, کیونکہ اس پہ لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں, لمبے کھلے ہوئے بال ہوتے ہیں, ٹھڑکی لوگ جا کے بدنظری کر رہے ہوتے ہیں, ان کو گناہ مل رہا ہے اور تو بے حیائی پھیلانے کا ذمہ دار ہے. دکان والا وہی دلائل دیتا جو ہم یوٹیوب کے مونیٹائزیشن کے جائز ہونے کے دلائل دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی میں نے لڑکی کی نہ تصویر بنائی, نہ میں نے اس پہ چھاپی, نہ میں تصویر بیچنے کے پیسے لے رہا ہوں, میں پیسے شیمپو کے لے رہا ہوں, شیمپو کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لے رہا ہوں اور شیمپو بیچنے کے پیسے لے رہا ہوں, اس کے علاوہ مجھے لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ ٹھیک ہے تو پیسے شیمپو کے لے رہا ہے, لیکن یہ شیمپو کی بوتل جب تو لوگوں کو بیچ رہا ہے تو کمپنی بے حیائی پھیلانے کے لیے تیری دکان کا استعمال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے کہ بوتلیں تیری دکان پہ لا کے رکھ دی اس نے جس میں لڑکیوں کی تصویریں, تو تو بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ تو بن رہا ہے نا. اب وہ کتنی بھی تقریر کرے کہ میں ذریعہ نہیں بن رہا بھائی, میں تو شیمپو کے پیسے لے رہا ہوں, آپ کہیں پھر بھی پھیل تو رہی ہے نا. آخر میں وہ جواب کیا کہے گا, مولوی صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہو, جس نے لڑکیوں کی ٹھڑک پوری کرنی ہوگی نا وہ جا کے پورن موویز دیکھ رہا ہے آج کل, جا کے وہ طوائف خانوں میں جا رہا ہے, نیٹ کلب میں جا رہا ہے, وہ نائٹ کلبوں میں جا رہا ہے, اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ شیمپو پہ بنی ہوئی بوتل. وہ پرانے زمانے کے لونڈے لپاڑے یہ کام کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے نا تو کچھ مخصوص قسم کے لڑکے ہوتے تھے اسکول میں, بالکل کلاس میں پیچھے بیٹھتے تھے, وہ انہیں کہیں کسی کو کوئی فوٹو مل گئی نا لڑکی کی, وہ سب بیٹھ کے اجتماعی اس پہ غور و فکر کر رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. ہر کلاس میں اسکولوں میں ایسا ہوا کرے, کچھ لونڈے لپاڑے غلط قسم کے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے. اب وہ زمانہ کیا ہے, ایک ٹھڑکی نے مجھے بتایا, ٹھڑکی تو نہیں کہنا چاہیے, بےچارہ اچھا آدمی ہے وہ, بس بچپن کی غلطیاں تھیں اس کی. اس نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ایسا دور تھا کہ میں نیا نیا بالغ ہوا تو مجھے کہیں کوئی تصویر مل گئی, کوئی لڑکی کی تصویر نہ پڑی ہوئی, تو نیم برہنہ لباس تھا اس کا, کہہ رہے میں نے وہ سنبھال کے کچرا کنڈی میں جا کے پتھر کے نیچے چھپا کے رکھ دی میں نے وہ. اب اس کی یہی فلم تھی, روزانہ آ کے اس کو دیکھ کے کیا ہوتا تھا, خوش ہوتا تھا, یہ وہ دور تھا. اور کہہ رہے پھر اس پہ توبہ استغفار کرتا اللہ سے, یا اللہ یہ میں نے کیا. مجھے اسی محلے کے ہیں, شروع میں نے ٹھڑکی اس لیے سے میں نے رجوع کیا, وہ بولے گا یار مولوی صاحب میں نے اپنا واقعہ سنایا, مجھے ٹھڑکی بول دیا. تو وہ اب بڑا دیندار ہے ماشاءاللہ, ادھر ہی رہتا ہے, نیک آدمی ہے. وہ اپنا واقعہ مجھے اس لیے بتا رہا تھا, میں نام بھی بتا دیتا لیکن وہ سمجھ جائے گا نا, बोले क्या मुसाब इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, हालांकि ये उसकी तारीफ है इस जमाने के लिहाज से। इस जमाने के लिहाज से क्या ये कि इतना नेक आदमी एक तस्वीर देख रहा है फिर तो वैसे वार कर रहा है, इस जमाने के लिहाज से, वरना तो ये भी बुरा अमल है। ऐसा ना हो आप ये काम शुरू कर दें कि यार मुफ्ती साहब कहने बड़ा नेक आदमी है। तो अब ये लतीफा है या नहीं है? अब जिस नौजवान ने ये करना होगा वो यूट्यूब के इश्तिहार नहीं देखेगा भाई, वो समझ रहे हो। अब उसने ये नहीं देखना कि एडवर्टाइजमेंट में लड़कियां आ रहा है, वो उसके लिए बेहयाई के रास्ते बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। तो इस पहलू से भी अगर गौर किया जाए ना तो फिर इसकी मोनेटाइजेशन पे पाबंदी लगाना, उसको नाजायज करार देना सिवाय लोगों के मुंह से निवाला रिस्क छीनने के, इसका और रिजल्ट नतीजे के एतबार से कोई और मतलब बनता नहीं है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसलिए मोनेटाइजेशन जायज है, हमारी राय यही है, और अपने लिए नहीं है, अल्लाह की कसम कि अपने फायदे के लिए हम कर रहे हो, पब्लिक के लिए हमने इसमें गुंज। मैंने तो इसमें शुरू से ही, क्योंकि बाज़ उलमा का मौकिफ सख्त था, मैं शुरू से ही उनसे लड़ता रहा कि भाई लोगों पे रिस्क के दरवाजे मत रोकें। जहां गुंजाइश का पहलू निकलता है वो लोग गुर्बत से मर रहे हैं, आप एक बेहयाई के पहलू को देख रहे हैं, उधर बहुत सारे पहलू और भी, और बेहयाई के रास्ते दूसरे बहुत ज्यादा हैं। फिर भी गुनाह बहरहाल गुनाह है, हम गुनाह को हलाल नहीं कर रहे। तो हम आज भी कहते हैं जो कंपनियां ये इश्तिहारात बना रही हैं वो नाजायज काम कर रही हैं, और ऐसे इश्तिहार बनाने के पैसे बहरहाल नाजायज होंगे। बनाना तो बहरहाल नाजायज है ना, तो जो बना के पैसे कमा रहे हैं वो बहरहाल नाजायज है, लेकिन उसमें भी नाजायज का अनसर शामिल हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें वो जायज भी बना रहा है उसमें, तो उसकी भी पूरी अर्निंग को हराम नहीं कहा जाएगा। समझते हो गए नहीं समझते? तो इसलिए पाकिस्तान में जो है ना, अभी फ्री लांसिंग के जरिए अगर आप डॉलर बाहर से बैरून मुल्क से अंदर ला सकते हो या और किसी तरीके से बाहर का पैसा ला सकते हो, तो इस वक्त तो जो लोग भी मुल्क बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं, वो मेरे पास तो हर तरह का तबका आता है, जो भी पाकिस्तान के लिए खैरख्वाह हैं, मुखलिस हैं, वो उनकी यही सोच है कि भाई लोगों को मुफ्ती साहब किसी तरह तरकीब दें कि बाहर से डॉलर, तभी पाकिस्तान ने रेमिडेंस पे टैक्स भी नहीं रखा है ना, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट चाह रही है भाई तू किसी तरह डॉलर अंदर मुल्क में लेकर आ किसी तरीके से, तो आप कमाएं किसी भी तरीके से, और एहतजाज भी करें यूट्यूब से, आपके मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात हो गई तो आप बोल दें सर आप काइंडली ये काम ना करें, लेकिन यूट्यूब या गूगल आपसे कहेगा कि भाई लोग इश्तिहार इसके अलावा कोई बना नहीं रहे हैं, तो बात घूम फिरकर उन ताजिरों की तरफ आ जाएगी जो इस तरह के इश्तिहार बना रहे हैं, वो बहरहाल जिम्मेदार हैं, उनके लिए गलत है ऐसे इश्तिहार बनाना। अलबत्ता कोई ऐसा इश्तिहार हो जिसका मकसद ही लड़की दिखाना हो, वो बहरहाल क्या होगा, नाजायज, और उसकी अर्निंग भी नाजायज होगी। तो हम यही वजह है कि जो लोग भी यूट्यूब से कमाते हैं उनको हम कहते हैं कि 5 से 10% जो है एक अंदाजे के मुताबिक आप उससे मंथली सदका करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हराम शामिल हो जाता है। और फिर आखिर में बता दूं कि ये सब हमने अपने लिए नहीं किया है, और ना इस चक्कर में मैंने 4 शादियां की हैं। लोग कहते हैं इनके YouTube के चैनल मोनेटाइज हुए हैं इसलिए 4, हमने जब की है ना जब शादियां, उस वक्त हमारी सोर्स ऑफ इनकम ऐसी थी कि आप सुन के बेहोश हो जाएं, आप बोले इसमें एक नहीं करता और मुफ्ती साहब ने इतने बच्चे भी पैदा कर लिए, और अल्लाह ने खिलाया पिलाया भी, और मैं लोगों को बताता हूं कि रिस्क किसके जिम्मे है, अल्लाह के जिम्मे, और ये जो 12 करोड़ मेरे बारे में मशहूर है सब गलत है, इतना नहीं है, और जितना भी है वो मेरे पास तो है ही नहीं, वो तो सारा एडमिन के पास है, सारा हिसाब भी उन्हीं के पास है, सारी तनख्वाहें भी वही देते हैं, वो तो मेरे पास है भी नहीं, वो तो वो मुझे जो भेजते हैं उसमें से कुछ मेरे लिए भी भेज देते हैं, वो तो वो मेरे पास है भी नहीं। इतना बड़ा दिल आजकल मार्केट में किसी का होता नहीं है कि चैनल आपका हो, यानी आपके नाम पे हो, और आप कहें कि मुझे हिसाब भी नहीं लेना। तो तंज करने वाले तो करते रहेंगे, वो गधे वाला लतीफा है कि जो मौलवी यूट्यूब की अर्निंग को हराम कहते हैं लोग उन पर भी तंज कर रहे हैं, जो हलाल कहते हैं उन पर भी तंज कर रहे हैं, तो वो गधे वाला लतीफा है कि वो एक आदमी गधे पे बैठ के जा रहा था अपने बेटे को नीचे, और खुद बैठा हुआ है बच्चा गधे को लेके चल रहा है, लोगों ने कहा देखो बाप होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, बाप होने का नाजायज फायदा, मासूम बच्चा कमजोर उसको नीचे है और खुद सवारी के मजे, इसने बच्चे को ऊपर बिठा दिया खुद नीचे आ गया। अब लोगों ने कहा देखो यार अभी से बच्चे को बदतमीज बना रहा है, बच्चे को, बच्चा जाहिर है बच्चा बाप बन जाएगा ना थोड़े दिनों में, इस खिदमत का आदी हो जाएगा, होना तो ये चाहिए बाप को, बाप कहे कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं मुझे बिठाओ ताकि ये बुढ़ापे में भी आपकी खिदमत करे आपको बाप समझे, बच्चे को क्या बनाया जा रहा है बदतमीज। इसने कहा यार लोग तो ताने दे रहे हैं, तो दोनों बैठ गए गधे पे। अब दोनों बैठ गए, लोगों ने कहा सवारी है क्या, बंदे दो दो बैठे हुए, कोई घोड़ा थोड़ी है ये, घोड़े पे तो मेरा ख्याल है दो बैठ भी नहीं सकते, कोई ऊंट थोड़ी है। तो उसने कहा यार ये बात भी सही है, गधा बेचारा मर जाएगा दो बंदे बैठे हैं। दोनों उतर गए, गधा खाली, लोगों ने कहा इनसे बड़ा गधे ये है लग वो रहा है, गधा वो है हरकतें इनकी गधे जैसी, अहमक, सवारी मौजूद है फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आगे दरिया आया, उसने उठा के गधे को अंदर फेंका। तो अकलमंदी का काम किया या बेवकूफी का काम किया? ओ भाई तेरी जेब समझ में आ रहा है तू कर ले और लोगों की बातों की परवाह मत कर। तो हम भी YouTube के बारे में जो हमारा मौकिफ है हम बयान कर देते हैं, जिसको जो इल्जाम लगाना है, अबे इन मौलवियों के चूंकि अपने चैनल आ गए, अबे यूं, तो बोलते रहो भाई, हमें अल्लाह को जवाब देना है। और मैंने जब YouTube के चैनल को के बारे में जब फतवा दिया कि जायज है, तो इसमें जब दूसरों के बारे में फतवा दिया तो अपनी तहकीक के मुताबिक दिया, जब हमारे एडमिन ने हमारा चैनल मोनेटाइज किया तो फिर मैंने अपने से सीनियर मुफ्तियों से फतवा लिया है। मैंने कहा ऐसा ना हो नफ्स की आमेजिश इसमें शामिल हो जाए, तो फिर मैंने सीनियर मुफ्ती जिनको मैं समझता हूं 2 घंटे बैठ के मीटिंग की हर पहलू से, इसके जायज नाजायज पहलू से, उसके बाद इत्मीनान हुआ। फिर भी भाई हम इंसान है, इश्तिहादी गलती हो सकती है, हमको ये तो नहीं कि वही है हमारी, तो जो हमारे सामने दलाइल है उसके हिसाब से कह दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैं कहता हूं खवातीन को जुम्मे की नमाज में आना चाहिए, अब उलमा कहते हैं फितना होगा, खवातीन बेपर्दा होकर आती हैं। मैं कहता हूं मानता हूं मैं फितना होगा, क्योंकि आजकल खवातीन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, तो फितना होगा, बेपर्दगी भी होगी, तो उसको कंट्रोल करने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाए, लेकिन ना आने में जो फितना है वो आने के फितने से ज्यादा, उनका मजहब से राबता क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मजहब से रिश्ता खत्म हो रहा है। वो घरों में सिर्फ टीवी में जो स्कॉलर आ रहे हैं उनको देख रही है, प्रॉपर उलमा तो मस्जिदों में होते हैं आमतौर पर, उनका रिश्ता मस्जिद से और इस्लामी शायर से खत्म हो रहा है, तो ये बड़ा फितना है। तभी यूरोप में तो बहुत खतरनाक है अगर आप खवातीन को मस्जिद में ना जाने दें, वहां तो दीन से कोई सीखने का और कोई जरिया नहीं है। तो इसी तरह यूट्यूब की में जो चैनल की मोनिटाइजेशन है उसमें भी फितना है, बहरहाल एड में खवातीन आती हैं, लेकिन अगर आप इसको हराम करार दे दोगे और पाबंदी लगा दोगे तो वो जो गुर्बत और महंगाई का फितना है, और जो डॉलर आपके मुल्क में आना चाहिए था वो कम, और जो दीन की बात ज्यादा से ज्यादा फैल सकती थी वो रुक जाएगी, ये फितना उस फितने से कई गुना ज्यादा है। समझते हो? ये मेरी राय है, किसी कोई इख्तलाफ करे तो 100 दफा इख्तलाफ करे। चाय का तमीज की चाय मिलना जो है ना, ये इतना मुश्किल काम है। मैं भी पेशावर गया, हमारे मेजबानों ने चाय नहीं पिया करो, मैं फिर बार बार मुझे डर लगता है कि मुझे देख के चाय के आदी ना हो जाएं आप लोग, हम तो मजबूरी में चस्का लग गया, दोबारा पता नहीं कब छोड़ेंगे इसको। तो लेकिन जब पिए तो तमीज की पिए ना, शरबत तो नहीं पिए ना वो। मैं भी गया, जहां भी जाता हूं एक दफा चाय आती है, फिर मैं कहता हूं ये मजा नहीं आया, इसको यूं करो, दोबारा आती है, फिर 3-4 दफा में जाके सही बनती है। देखो चाय ना पिया करो, लेकिन पीना है तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बनाओ आधा पानी आधा दूध, उसमें उसी वक्त चीनी और पत्ती डाल दो, गुड़ डाल दो तो ज्यादा अच्छा है, फीकी पियो तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम तो मीठा खाते हैं पीते भी हैं, ज्यादा नहीं पीना चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन अब भाड़ में जाए डॉक्टरों की ऐसी की तैसी, डॉक्टर तो पराठे से भी मना करते हैं। और क्या, हमारे घर वालों ने एक क्लिप भेजा है, डॉक्टर साहब लोगों को समझा रहे हैं कीटो डाइट और फलाना और एक्चुअली यूं करके ना, मैंने कहा ये डॉक्टर की तहकीक भाई बहुत बेहतरीन है, 2 पराठे चाहिए मेरे को अभी, वो अपनी जगह है भाई। अब रात मैंने आम फोड़े हैं, डॉक्टर कहते हैं रात को आप लो कार्ब डाइट लें, कार्ब रात को लेना डेंजरस है। अब चौथा आम आपको पता है रात को आया, खाना हमने खाया हुआ था, 5-6 हमने फोड़ दिए, मुझे बार बार वो डॉक्टर का ना लो कार्ब याद आ रहा है, मैं फोड़े जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं डॉक्टर तेरी ऐसी की तैसी, अबे इतना लज्जत अल्लाह ने उसमें रखी है यार चौंसे में। उसके लिए ये देखना कि एक्चुअली एक डॉक्टर साहब ने क्लिप बनाया, मुझे उनकी क्लिप पे एतराज नहीं है, बात सही कर रहे हैं वो तो मेडिकल साइंस उनका तो काम है ये। वो कह रहे हैं आम अगर आपने खाना भी हो तो ऐसे खाएं, एक आम उसका 1/4 आम, एक आम को काटा और उसके साथ सैलेड, ताकि जो उसमें जो ग्लूकोज है ना उसका लेवल क्या हो जाए फाइबर की वजह से, उसके साथ सैलेड, सैलेड में पत्ते खीरा वीरा ककड़ी मकड़ी ये रखी हुई है गाजर के, और एक फांक, और वो भी छिलके समेत खाएं ताकि फाइबर मिले आम। मैंने वो डॉक्टर का मैं खुदा ना खास्ता मजाक नहीं, वो अपने लिहाज से लोगों को सही गाइड कर रहे हैं भाई, मेडिकल साइंस तो यही कहती होगी, लेकिन मैंने कहा यार ये डॉक्टर साहब खुदा को मानो अल्लाह के मानो, अल्लाह मियां ने पाकिस्तानियों को एक ही तो ढंग इतनी जबरदस्त, मैं नहीं कह रहा एक ही ढंग की चीज दी है, फल फ्रूट ही तो यहां के पैदा, ये आम आप दुनिया में कहीं जाके खा लें आपको ये जायका नहीं, इतने बड़े बड़े आम तो बहुत हैं, अंदर जायका ही नहीं है। तो इतना मजे का आम डॉक्टर साहब, उसमें एक छिलका, वो भी छिलके समेत, तो हमारी बकरी क्या खाएगी फिर? तो हमने कहा फोड़ दे यार, हमने तबीयत से फोड़े, फिर सुबह आदमी थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। अच्छा, मेरा तो वेट भी चूंगे नहीं बढ़ रहा, तो शायद मुझे कोई डॉक्टर इतना मना भी ना करे, लेकिन सेहत का जरूर ख्याल करें, लेकिन तमीज के दायरे में रह के। डॉक्टरों को बहुत ज्यादा मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है, समझते हो कि नहीं? लेकिन टेस्ट वेस्ट करवा, ऐसा ना कोई लुढ़क जाए दो चार लोग, अब आम फोड़ फाड़ के शुगर हो जाए उनको। तो जो मर्जी करना है करें, डॉक्टरों से पूछ के करें। मैं तो आपको एक आम की बात बता रहा हूं कि यार हमसे इतना ज्यादा डॉक्टरों को फॉलो नहीं किया जाता। डॉक्टर तो बेचारा, डॉक्टर तो कहते हैं नाश्ते में ना ये अंडा। अच्छा, बाहर मुल्कों में ये होता है, हर चीज पे लिखा हुआ होता है इसमें इतनी कैलोरीज हैं। तो डॉक्टर आपके लिए रिकमेंड करता है कि आप इतनी कैलोरीज ले सकते हैं, 1500, 2000, 500, लोग उस हिसाब से खा रहे होते। कितनी बड़ी टेंशन है यार ये। इसलिए मैं आपको एक देसी मेडिकल साइंस बताता हूं, सुबह उठो, जॉगिंग करो तबीयत से। देसी तरीका बता रहा हूं सेहत को बरकरार रखना। सुबह उठो तबीयत से, क्या करो, दबा के पसीना निकालो अपना, उसके बाद नहाओ, भूख लग रही है तो खा लो, नहीं लग रही है तो मत खाओ। फिर जब तबीयत से भूख लगे ना, उस वक्त खाओ आप, समझ रहे हो? और इतना ना खाओ कि ठोसना पड़े, बस जब दिल भर गया तो छोड़ दो उसको, ठोसना ठोसो नहीं। और फिर जब तक शदीद दोबारा भूख ना लगे, उस वक्त तक दोबारा मत खाओ, और सब कुछ खाओ। लोग जायदादें खा रहे हैं ना, बहनों की विरासतें खा रहे हैं, तो अगर आपने उसके साथ अंडा मछली दूध भी शामिल कर लिया तो क्या जा रहा है? सब कुछ खाओ, कभी बिरयानी खा ली, कभी पुलाव खा ली, कभी गोश्त खा लिया, कभी अंडा खा लिया, कभी एक ही चीज पे इक्तफा, सारी चीजें मिलती रहेंगी आपको। तो 40 साल तक तो ये सेटअप चलाते रहो। डॉक्टर इख्तलाफ करेगा तो फिर जाओ, फिर वही आम को ना छिलके समेत खाओ, ट्रॉफी भी खेलना है फिर। और फिर आपने एक जिम, कभी एक हफ्ते में 2-3 दफा जिम भी चले जाया करो, मेरा ख्याल है काफी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा डिप्रेशन से मर जाता है फिर आदमी ना, कैलोरीज डब्बे पे देख देख के खाएगा। वो एक आदमी ब्लड प्रेशर की गोली खरीदने के लिए गया, वो इतनी महंगी थी कि कीमत सुन के बीपी उसका हाई हो गया। तो बाज दफा बहुत ज्यादा जब कीटो डाइट और ये छिलके, तो आदमी पागल इसी से टेंशन से मर जाता है। ये अल्लाह ने लज्जतें हमारे लिए पैदा की है भाई। आम किसके लिए पैदा किया है? छिलके समेत खाने के लिए पैदा नहीं किया। छिलके अल्लाह ने कुरान में जगह जगह है, ये छिलके तुम्हारी बकरियों के लिए, ये कुरान की आयत का मफहूम बयान कर रहा हूं। और अंदर का गुदा किसके लिए? चले कल केला भी बोले छिलके के साथ खाओ, और ज्यादा तरक्की की ना, कहेंगे छिलका खाओ गुदा बकरी को खिलाओ, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तो फाइबर ही फाइबर है ना छिलका। तो कल हो सकता है डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक कल हम छिलके खा रहे हो बैठ के, छिलके उतार उतार के, ये आप खाएं, ये आप खाएं, और आम किसको खिला रहे हो? थोड़े दिनों में बकरी का ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, वो सारी बीमारियां किसको लगेंगी? बकरी को लग जाए। तो लाइफ को एंजॉय करो जायज तरीके से। और सब बातों की एक बात बताऊं आखिर में, 4 शादियां कर लो, सब कुछ हजम होगा, ऐसी की तैसी यार। सब कुछ हजम ना हो तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि तुम 4 शार्क मछलियां तुम्हारे पीछे होंगी। छिलके के बगैर आम हजम होगा, खजूर हजम होगी, दूध हजम होगा, अंडे हजम होंगे, क्योंकि जैसे ही घर में ना गए, घर से बाहर रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल हो गए आप। वो शार्क मछली वाला वाकया है ना, 4 मछलियां और एक मछली शार्क, मतलब मछली तो फुर्ती रह जाएगी। तो आपकी जब 4 होंगी ना, तो बस आपकी फुर्ती देखो, फिर हर वक्त भाग रहे होगे आप, और हर लिहाज से आप फिट फाट रहोगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब। चलो आगे यार। अच्छा मेरे भाई, इमाम साहब दुआ करें इज्तिमाई, अल्लाह पाक हामिद रिजवान का नसीब तकदीर बहुत अच्छी कर दे, आमीन, दिल से दुआ भी। और अच्छा, रात को जल्दी भी सो जाया करो, ये भी जरूरी है सेहत में, जल्दी उड़ जाया करो, और खुश रहा करो मेरे भाई। और खुश रहना मजहब पे चले बगैर मुमकिन है नहीं, क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो खुश रहने के अलावा दुनिया का हर चीज मिलेगी उसको, उसको पैसा मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, खुशी नहीं मिलेगी। खुशी उसी को मिलेगी जो किसको मानेगा? अल्लाह को, कि मेरा रब है, वो मुझे परेशानी भी दे रहा है तो इसमें मेरे लिए बेहतरी होगी। मुसाफिर खाना समझेगा, पैसों से दिल नहीं अटकाएगा, तो वो खुश रहेगा। तो खुश रहेगा तो लाइफ को क्या करे। और तकबर मुतकबर आदमी खुश नहीं होता। ये जो फन्ने खानी है ना, मैं जाऊं तो ससुराल में मेरा एहतराम हो, मुझे किसी ने पूछा क्यों नहीं, मैं घर गया मेरी बेगम ने मुझे नहीं पूछा, उस दिन मेरा साला आया हुआ था उसने मुझे नहीं पूछा, मैं फलाने के घर गया मुझे पूछा फलाने, یہ جو تکبر والا اسٹائل ہے نا, ایسا آدمی کبھی بھی خوش بولو نہیں. گھر گیا ہو بیگم پوچھے, بہت اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی چائے بنا کے پی کے پتلی گلی سے. عزت گھر کے باہر ہوتی ہے, گھر کے اندر بہت کم لوگوں کو عزت ملتی ہے. تو خوش رہو میرے بھائی, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے یوں کر دیا تو اس نے یوں کر دیا, ایسے کھانا نہیں پکایا جاتا ہے. چھوڑو یار, بیگم کا بنیادی مقصد ہے آپ کی کیا ہے کہ وہ شریک حیات ہے, گپ شپ لگائے آپ سے, آپ کو اولاد دے. یہ دو کام اگر وہ کر رہی ہے تو بس بیسک ذمہ داری پوری کر رہی ہے. کیونکہ اگر وہ نسل روکے گی نا, کل آپ کا گھر آباد نہیں ہوگا, کل بڑھاپا آپ کا خراب گزرے گا, آپ کو خوشیاں نہیں ملیں گی, سمجھتے ہو؟ تو یہ بیسک کام اگر کر رہی ہے تو بس ٹھیک ہے. پھر باقی سارے عیب, اللہ کرے باقی عیب نہ ہو اس کے اندر, لیکن نہیں بھی ہیں تو گزارا ہو جائے گا. اور یہی اگر نہیں کر رہی ہے وہ, تو پھر معاملہ خراب ہے. اب لوگوں کے ان بڑے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس دن وہ آئی تھی تو فلانے کو نہیں پوچھا, اس نے اس کو نہیں پوچھا, اس دن چمونی آپ آئی تھی ان کے سامنے چائے رکھنی چاہیے تھی, یہ کیا ہے, یہ چھوٹے, تو خوش نہیں رہو گے پھر, سمجھتے ہو؟ قرآن حفظ کر رہا تھا وہ استاذ, مجھے پہلی دفعہ میں غصہ نہ کیا کرو, پہلی دفعہ میں آرام سے سمجھایا کرو. جو پہلی دفعہ میں غصے سے بات شروع کرے بد اخلاق ہے. تین موقع تو کم از کم دو نا, بیگم کو آرام سے سمجھا دو, بیگم مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, اور ٹائم پہ مجھے بس کھانا دے دیا کرو جب میں بتا دیا کروں. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ پھر بھی محبت ہوں, پھر تھوڑا سا پھر چنگیز خان بنتا ہوا اچھا لگتا ہے یاد. اور اگر اللہ نے وسائل دیے بولے ٹھیک ہے یار باہر سے منگوا لو یار. اب آپ کہہ سکتے ہیں باہر کا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا, صحت خراب کرتا ہے, تو پھر کوئی اور دیکھ لو اس کے لیے حل. اصل میں سب ایک بیوی والوں کے مسئلے ہیں, یہ دو والوں کے یہ مسئلے, ان کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہوگی نا, کھانا کبھی ٹائم پہ ملے گا کبھی نہیں ملے, دو ہو گئی نا تو پھر یہ ہوگا کہ میرے پاس کیوں نہیں کھا رہا ہیں. پھر وہ ایک بجے کا ٹائم دے گی تو 12:30 بجے بنا کے رکھے گی وہ, پھر عورت چاہے گی وہ ادھر جائے نہیں, یہ کہاں کھائے, یہاں کھائے. جب ایک بیوی ہوگی آپ کی, کپڑے دھل رہے ہیں نہیں دھل رہے مسئلے ہوں گے, جب دو ہوں گی تو ادھر کیوں دھل رہے ہیں, ہم کیا سوتےلے ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے, نابالغوں کو کہاں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. جب آپ کی ایک بیگم ہوگی تو کہے گی اما کو میرے پاس لا کے کیوں رکھا ہوا ہے, میں ہی رہ گئی ہوں. جب دو ہوں گی, اما کو ادھر کیوں رکھا ہوا ہے, کیا میں ان کی بہو نہیں ہوں؟ غیرت پیدا کرو, غیرت, سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آپ کے ایک بیوی اور بچے ہوں گے تو بچے کہیں گے ابا ہر وقت ہمارے گھر میں گھسے رہتے ہیں, ابا باہر جاؤ, خام خام میں آپ کی وجہ سے ہم نہ یہ کر سکتے ہیں نہ گٹکا کھا سکتے ہیں. جب آپ کے دو چینل ہوں گے تو بچے کہیں گے ابا ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر کیوں نہیں آتے؟ دیکھو یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں, تو ان کی پہلی بیوی کے بچے اور دوسری زوجہ کے بچے, اتنا دونوں میں حسد تھا ابا کی وجہ سے, یعنی پہلوں میں حسد تھا کس کی وجہ سے, ابا. یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے نا, تو ان کے بیٹوں کا جرم بھی, وہ جرم جو خاندانی جرم ہوتا ہے, پیسوں پہ نہیں, ان کو بھائی سے جیلسی تھی کہ ابا کی جائیداد ادھر کیوں چلی جائے گی دوسری, ان کو یہ تھا کہ یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کی جو جذبات ہیں دوسرے بیٹے کی طرف زیادہ ہیں, ہم اس کو کنویں میں ڈالیں گے تاکہ ابا صرف کس کے ہو جائیں, ہمارے. ابھی تو ابا کی 2% کی ویلیو نہیں ہے گھروں میں, ان کو پتا ہے لے دے کے ابا نے آنا کدھر ہے, ادھر ہی آنا ہے, ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, لہذا ابا رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی کے لیے ابا کہے میں کہاں فٹ پاتھ پہ زندگی گزاروں گا, میرے بھائی بچوں کا محتاج ہوتا ہے اور بچے باپ بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں نا اور بچے دونوں, تو بچوں کو یہ تھا ابا ادھر کو نہ جائیں, ابا کدھر کو آئیں, ادھر کو آئیں. لہذا اس محبت میں, باپ کی محبت میں اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. تو دوسری شادی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ سوتےلے بھائیوں میں نفرت بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک پازیٹو پہلو ہے کہ یہ نفرت باپ کی محبت میں ہوگی, تو باپ کو تو کم از کم محبت ملے گی نا. ابے نہیں آ رہی سمجھ میں, دیکھو میرا ایک دوست, میرا شاگرد ہے, وہ لوگ 32 بہن بھائی ہیں, ان کے ابا کی 4 شادیاں ہیں, یہ 8 سال پرانی رپورٹ ہے, اب تک 40 ہو چکے ہوں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب یہ 4 شادیاں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے ہمارے سوتےلے بھائیوں میں اور ہم میں تھوڑی سی آپس میں کیا ہے, تھوڑی سی جیلیسی ہے. तो अगर एक ही बाप के होते सारे, एक ही मां के होते तो ये जेलिसी ना होती। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, एक मां से जो है ना उनमें दूसरी मां की औलाद से थोड़ी सी नफरत है, लेकिन आपस में क्या है, मोहब्बत। अगर ये सब एक ही मां बाप के होते तो वो जो हसद दूसरी तरफ है ना वो सारा आपस में होता, वो डाइवर्ट हो गया है। नहीं आई बात। मैंने कहा आप चूंकि एक मां की हो ना तो इसमें चूंकि दूसरी मां के भी हैं, उनकी वजह से आपस में क्या है, रिलेशन मजबूत है कि हम सब एक मां की औलाद हैं और वो अब्बा हमारे उन्हीं की औलाद है लेकिन अम्मा अलग हैं, तो ठीक है इससे थोड़ी सी नफरत भी हो रही है लेकिन आपस में मोहब्बत भी इसी बेस पे हो रही है, एका भी हो रहा है। लेकिन ये शरी हुदूद से तजावज नहीं होना चाहिए कि नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। और बहुत से घरों में हमने देखा कोई नफरत नहीं होती, बिल्कुल। हमारे एक रिलेटिव लाहौर में थे, अभी तो उनका इंतकाल हो गया, बहुत पुराना वाकया, उनकी सब बहन भाई इकट्ठे घर में रहे हैं दोनों जौजात के, कोई लगता ही नहीं था कि इनमें कोई फर्क है आपस में, तो ऐसा भी हो जाता है बाज दफा। तो इसलिए मेरे भाई ये जब दो होंगी तो दो या तीन तो फिर आपकी भी थोड़ी सी वैल्यू, लेकिन इसके लिए आपको कुर्बानी बहुत देनी पड़ेगी, इतनी आराम से इज्जत मिल नहीं जाती। इसके लिए पहले जलील होना पड़ता है तबीयत से, तबीयत से जलील होने के बाद फिर क्या होती है, इज्जत होती है। अच्छा भाई, आपकी मस्जिद में भी ये लगा हुआ है कि असर की नमाज के बाद दुरूद पढ़ने से ये सवाब होता है, क्या ये दुरूद साबित है? हमारी मस्जिद में बोर्ड लगा हुआ है लेकिन ये दुरूद ज़ईफ हदीस है, कोई सही रिवायत से साबित नहीं है। लोग कहते हैं ज़ईफ हदीस फ़ज़ाइल में चलती है, ठीक है चलती है, लेकिन जब सही हदीस वाले दुरूद शरीफ मौजूद हैं तो फिर ज़ईफ की तरफ जाने की जरूरत क्या है? वो दुरूद पढ़ लो जो सही हदीस में, सही हदीस में ये बात साबित है कि जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ने की का ज्यादा सवाब है, तो वो दुरूद पढ़ लो जो सही हदीस से साबित है, दुरूद इब्राहिम ही है या और इसके अलावा। मैं लेकिन अगर कोई ज़ईफ पर अमल भी करके दुरूद वो वाला भी पढ़ रहा है तो काबिले मलामत नहीं है वो, उसको बिदअत ही नहीं कह सकते। मैं एक बार शरा लड़की से दूसरी शादी करना चाहता हूं, लड़की ढूंढने में ताउन करें, ये वाला काम हम नहीं करते, हमें क्या पता भाई आप कौन हो, जिम्मेदार हो या नहीं हो। मेरी बहन के ससुराल वाले मुनकरे हदीस हो गए हैं, कहते हैं सिर्फ उन हदीस को मानते हैं जो कुरान से मिलती हैं। साथ अबे यार उर्दू तो उर्दू में लिखा करो ना, क्या अमल। खुलासा मैं समझ गया, मुनकिरीन हदीस कहते हैं हम सिर्फ उस हदीस को मानते हैं जो कुरान से मैच करती हो, जो कुरान के मुताबिक हो। देखें बजाते खुद ये बात दुरुस्त है, लेकिन मुनकिरीन हदीस जो ये दावा कर रहे होते हैं इनके मकसद गलत होते हैं और ये इस उसूल को भी फॉलो नहीं करते। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मौकिफ यही है कि वो हदीस जो कुरान के खिलाफ होगी वो उसको रद्द कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं कुरान के खिलाफ जा रही थी, उन्होंने कहा कुरान चूंकि मुतवातिर है और उसकी वर्डिंग भी बिल्कुल एक एक लफ्ज महफूज है, हदीस की हिफाजत हुई है मगर उस तरह से नहीं हुई है। तो फी नफसी हमारी राय में ये उसूल बेसिकली दुरुस्त है, लेकिन मुनकिरीन हदीस का ये उसूल है नहीं, इनका असल है कि मानना नहीं है हदीस को, क्योंकि जब इन्होंने किसी हदीस का इंकार करना होता है बिला वजह उसको कुरान के खिलाफ करार देते हैं ये लोग। इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, मुनकिरीन हदीस ने नमाज का इंकार कर दिया और कहते हैं कुरान में कहीं भी नहीं है कि पांच नमाजें इस तरीके से पढ़ो। कुरान में कहीं नहीं है लेकिन नमाज पढ़ने का तो है ना, हदीस में उसकी डिटेल है। अब जब हदीस में डिटेल आ गई तो वो हदीसें कुरान के खिलाफ नहीं जा रही बल्कि कुरान को एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन ये क्या कहेंगे वो हदीसें कुरान के खिलाफ हैं और उसको क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। तो इसलिए मुनकिरीन हदीस गुमराह लोग हैं और ये जिस किस्म के दावे कर रहे होते हैं ना, इनका मकसद असल में हदीस के हुज्जत होने का इंकार करना होता है कि हदीस को मानना ही नहीं है, जबकि हमारा दीन इतना कुरान में मसाइल नहीं है जितने अहादीस में है, तो इसलिए तो फिर तो सारा दीन ही खत्म हो जाएगा। मेरी उम्र 25 साल है, बहुत लंबा सवाल है मेरे भाई, लोग थक गए हैं। अल्लाह ताला भाई इनकी वालदा की तबीयत खराब है, दिल से दुआ है अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए, आप लोग भी दिल से दुआ करें। मेरे चाचू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, आप दुआ करें अल्लाह उनको, दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला आपके चाचू को मुसीबत से निकाल दे, जो भी परेशानी है उससे अल्लाह ताला निजात अता फरमाए। मैं जिससे प्यार करता हूं इसने मुझसे शादी की, मुझे शादी की इजाजत दी है मगर पहले मेरी मंगनी हो चुकी है, घर वाले दूसरी की इजाजत नहीं देते। घर वालों से जो पूछ के दूसरी शादी करता है दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ पैदा ही नहीं हुआ कोई, पागल हो घर वाले तुम्हें क्यों दूसरी की इजाजत देंगे, उनका क्या फायदा इसमें भाई, वो तो मसाइल खड़े होंगे, लड़ाई झगड़े बदनामी। तो इसलिए घर वालों को नहीं बता दें, अब और अपने खर्चे पे अगर कर रहे हैं, अब्बा के खर्चे पे कर रहे हैं, फिर तो अब्बा से पूछना पड़ेगा ना। अपने खर्चे पे कर रहे हैं तो अब्बा को इत्तला दें, मोहब्बत से समझाएं, अब्बा ने मानना नहीं है। अब्बा क्यों नहीं मान रहे? अब्बा की एक एज हो, अब्बा अगर आपकी एज के होते अब्बा भी कर रहे होते, हकीकत है, समझ रहे हो ना, अब्बा भी कर रहे होते। लेकिन अब्बा, आप मुझसे तो कितने अब्बा आके मिले, काश मुफ्ती साहब आप 10 साल पहले मिल जाते, काश आप 25 साल पहले मिल जाते, इस तरह के बहुत से अब्बाओं ने मुझे कहा है, कह रहे हैं हमारी उम्र इतनी हो गई है कि अब जाहिर एक जज्बात होते हैं इंसान के, अब वो रहे नहीं है जज्बात, तो काश आप पहले मिल जाते, तो अब अब्बा क्यों करने देंगे। तो इसलिए आप कर लें, लेकिन अपने खर्चे पे, अपनी जिम्मेदारी पे, दोनों के हुकूक बराबर अदा करने हैं आपने, किसी एक के साथ जुल्म ज्यादती ना हो। मैं एक दुकान में बतौर सेल्समैन काम करता हूं, मैं सवाल बुरा के बिल बनाना जायज है, अगर शय की कीमत 50 रुपए हो और ग्राहक 70 रुपए का बिल बनाने का मुतालबा करें जबकि इसकी नियत महज चोरी यानी मालिक को डंडी मार रहा हूं, बिल्कुल हराम है, नाजायज है, गुनाह में ताउन है। ये बहुत लोग कर रहे होते हैं कि यार इतना है लेकिन बिल तो इतना का बना दे ताकि कंपनी से हम ज्यादा पैसे लें, तो कहां से जायज हो गया भाई ये। अच्छा, लोग कहते हैं फिर हमारा बिजनेस ही नहीं चलता, वो फिर काम दूसरों के पास आता है, तो बिजनेस चलेगा आप कंपनी को कंप्लेन कर दें, आप बता दें भाई मैं जितना काम होता है उतने का बिल बना के दूंगा लेकिन इसकी वजह से मेरे पास काम आ नहीं रहा है, तो हो सकता है कंपनी आप ही को फिर प्रोटोकॉल देना शुरू कर दे और उसके कुछ सबूत पेश कर दें उनको। शादी होने वाली हो और निकाह से पहले निकाह कर लिया छुप के क्योंकि शादी में बहुत टाइम दरकार है, ऐसा करना ठीक होगा क्योंकि फिर फैमिली के सामने दोबारा निकाह करना होगा, तो एक ही लड़की से दोबारा निकाह इस तरह जायज है?
मैं जब पहली दफा दुबई गया था ना तो ऐसा ही निकाह पढ़ाने गया था, लड़का पैसे कमा रहा था दिरहम में, ठीक ठाक आमदन थी, लड़की कनाडा में थी ठीक ठाक, यानी उसको भी कोई मसला नहीं था उसके साथ, खामखा में अब्बा अम्मा बिला वजह के कबाब में हड्डी बने हुए थे और अब्बा कह रहे थे लड़के से कि जब तक इतनी आमदन नहीं हो जाती तो मैं करूंगा नहीं। मैंने कहा ये तो जुल्म है भाई, जब आपकी अच्छी खासी सैलरी है, तो मैंने उनका निकाह पढ़ा दिया। अब मैं नहीं पढ़ाता, आप कोई मेरे पास ना है कि मैं भगाना चाहता हूं तो मेरा निकाह, उनको तो मैं जानता था ना, दोस्त थे मेरे, क्योंकि इस तरह लोग आ जाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता निकाह भाई,
क्योंकि इसमें धोखे भी बहुत होते हैं, लड़कियों को उल्लू बनाया जा रहा होता है। एक दफा क्या हुआ कि 15-16 साल की लड़की कोई लाहौर से भगा के लाया, इधर आके मुझे कहने लगा कि आप इससे निकाह पढ़ा दें। मैंने उस लड़की से पूछा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी 16 साल उम्र है, तुम लाहौर से भाग के आई हो, तुम्हें क्या भरोसा इस आदमी के लड़के के बारे में? तो उनको तो बल्कि मैंने कहा दोबारा, मुझे ख्याल था कि ताबे बेटा तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे मां हैं और इस लड़के पे तुम्हें एतमाद नहीं, एतमाद है बाप पे एतमाद नहीं है, लेकिन मां बाप की भी गलती है ये। जब लड़की कह रही होती मुझे फला जगह शादी करो तो अब्बा को चाहिए थोड़ा सा गौर तो करें ना कि ये हो सकता है वो लड़का ठीक हो इसके लिए, खामखा में उसको क्यों मुखालफत कर रहे हो? तो दोनों गलती पर होते हैं ऐसे मौके पे। तो खैर हमने तो, मैंने कहा कि आप निकल लो पतली गली से वरना मैं फिर थाने में रिपोर्ट करवाऊंगा लड़की भगा के लाया है, ठीक है ना। और फिर मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि यार थाने में नहीं तो कम से कम इसके मां बाप तक तो हमें पहुंचना चाहिए था, लेकिन मुझे यह था कि मुझ पर एतमाद करके आया है और मैं ही इसको पकड़वा दूं, वो हम सोचने में ही मसला हो गया। लेकिन आइंदा के लिए हमने यही सोचा है कि कोई इस तरह की 15-16 साल की लड़की को भगा के लाएगा तो बच्ची को हम बिठा लेंगे और फिर हम उसके मां बाप का पता लगवाएंगे कि इसके अब्बा कहां पाए जाते हैं और अब्बा को भी समझाएंगे फिर हम कि खुद अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करो, समझ रहे हो। अच्छा मेरे भाई, तो ये बात हो गई है। हाँ, तो मैंने वो दुबई में निकाह पढ़ाया था तो वो फिर हमने पढ़ा दिया निकाह ना, नादरा से रजिस्ट्रेशन भी करवा दी, पक्का काम हो गया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरा निकाह हो गया आज, माशाल्लाह बड़े खुश हैं, उनके बच्चे भी हो गए, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे हैं बड़े खुश माशाल्लाह, उनकी जिंदगी गुजर रही है, अब्बा के चक्कर में अब तक बैठे रहे होते हो और फिर पता नहीं उल्टी उल्टी फेसबुक पे बातें, बेहयाई और जो कुछ होता है, गुनाह की तरफ जा रहे होते। फिर क्या हुआ कि जी फिर उन्होंने कहा अब हमने एक्सपोज कर दिया कि निकाह हो गया है, बड़ा हंगामा हुआ तो हमने नादरा का सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, तो उन्होंने कहा यार तो पक्का ही काम हो गया, लेकिन दोनों के माँ बाप समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा हमारी इज्जत का मसला है, अब एक लोगों को दिखाने के लिए भी निकाह कर लो तो ये जायज है, इसमें कोई हरज नहीं। मैंने कहा अकलमंद लोग हैं माशाल्लाह, तो दोबारा फिर शादी कराने गया मैं, यानी एक ही आदमी की दो दफा मैंने शादी कराई है, कितना अजीम इंसान होगा यार वो, सोचो आप, जिसकी एक ही बीवी से निकाह टूटे बगैर दो दफा शादी हो रही है। फिर हम दोबारा गए, हमने उनका निकाह पढ़ाया, मैंने कहा इनके अब्बा को नहीं बताना, पहले वाला भी मैंने ही पढ़ाया, तुम तो बच जाओगे, मुझे पकड़ के कूटेंगे वो,
तो सही है ना,
उन्होंने नहीं बताया,
वरना होता ही है कि वो शादी करके मजे उड़ा रहा होता है, पिट हम रहे होते हैं, इन्होंने कराई है।
अच्छा भाई, लेकिन तो भाई अब आपने इससे शादी करनी है नहीं करनी है तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि लड़के छुपके जो निकाह करते हैं उसमें लड़कियों को फिर ब्लैकमेल करते हैं, उसमें फिर ये है कि उनको इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह नजरअंदाज कर दिया, फिर दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। अरेंज मैरिज में ये होता है, बाकायदा घर से रुख्सत होके जाती है, उसको छोड़ना आसान काम नहीं होता। ऐसे भी वाकयात हुए, लड़की से छुपके निकाह किया, प्रेगनेंसी हो गई, माँ बाप को पता नहीं है, शादी की डेट में अभी साल बाकी है, फिर हमल गिरा रहे होते हैं, तो हमल गिराना भी जायज नहीं है, उस बच्चे का क्या कसूर है भाई, क्या आप अपने चक्कर में उसको, बड़े मसाइल खड़े होते हैं, इसलिए मैं इसको इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करता। बहुत शदीद मजबूरी में अगर ये काम करना भी हो तो फिर कोर्ट मैरिज करो, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनते हैं, अदालत इन्वॉल्व होती है, उसमें लड़की को ब्लैकमेल करना आसान नहीं होता, और लड़के की संजीदगी का यहीं से पता चल जाता है कि ये सीरियस है भी या नहीं है, वो चाह रहा होता है गंदे नाले में बैठ के छुपके हम निकाह कर लें, कोर्ट में जब जाएंगे ना तो फिर उसको डरता है, फिर तो यहीं से पता चल जाता है कि ये सीरियस है या नहीं है। लेकिन ये भी आखिरी दर्जा है, असल तो यही है कि मनाएं किसी तरह माँ बाप को और अरेंज मैरिज करें, भगाने भगाने वाला काम ठीक नहीं है, यहां तो भगा नहीं रहे तो छुपके निकाह कर रहे हैं ना, दोबारा फिर खुलेआम निकाह होगा, तो फी नफसी तो जायज अमल है, लेकिन यही है कि इससे पहले इख्तलाफात हो गए, निकाह तोड़ने की नौबत आई तो फिर मसाइल खड़े होते हैं, और किसी ने कोई मसला पूछना हो यहां से तो पूछ लें भाई, फिर हम छुट्टी करते हैं। जी हाँ, देखें ये कह रहे हैं हमारी मस्जिद के इमाम हैं, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, सब चंदा करके इमाम साहब की तनख्वाह देते हैं, तो उसमें कुछ बंदों पे डाउट है। देखें जहां भी पैसों का मामला आएगा ना, फ्रॉड होगा। जब आपने ग्रुप बना लिया और इजाजत दे दी कि इमाम साहब की तनख्वाह के नाम पे आप लोगों से पैसे ले सकते हैं, तो कुछ पता नहीं तनख्वाह के नाम पे कितना ले रहा हो, और ऐसे भी होते हैं 20-20 लोगों से तनख्वाह के नाम पे पैसे लिए जा रहे होते हैं, और तनख्वाह 20,000 है तो 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया जी। जो हराम कमाते हैं, अच्छा चंदा देने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो हराम कमाते हैं, जिसका पहले से पता हो कि हराम कमाते हैं उनसे नहीं ले सकते, ले लिया तो बिला नियत सवाब सदका करना पड़ेगा उसको। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं, कोई भी काम इस तरह का होता है ना चंदा वाले का, उसमें जब तक प्रॉपर रसीद और ये सब चीजें ना हो, तो इसमें फ्रॉड हमने बहुत देखे हैं, चंदे के जहां चंदा आना शुरू हुआ नीयतें तब्दील होना शुरू, तो इंसान नोट छापने की मशीन बन जाता है। बहुत तजर्बे अगर मैं बयान करना, गरीब है इसकी शादी होने वाली, इसके लिए दुआ करो बेचारा, चंदा नहीं दे देना कहीं, दुआ करो, इतना गरीब आदमी सिर्फ बयान सुन के कर रहा है, वरना इस आमदन में ना लगता नहीं है कि कोई, इनके भाई ने भी शादी कर ली, अब्बा ने भी ऐसे ही शादी की थी, क्योंकि हमारे दोस्त है ना बचपन से, तो हम लोग ये वाले लोग हैं, पैसे हो ना हो शादी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आज तक अल्लाह ने कभी हमें भूखा सुलाया नहीं। और हमारे वो दोस्त जो पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में थे, आज तक पैसा बना रहे, उम्रें निकल गई उनकी, तो ये भी क्योंकि हमारा ही खानदान है, भांजे हमारे, तो ये भी बालिग हुए, अब्बा इसके बड़े भाई की भी अब्बा ने शादी कर दी, सबने कहा भाई कमा रानी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, जहां इतने लोग खा रहे हैं बहू क्या करेगी, खा लेगी, घर में कमरा भी नहीं था, अब कमरा बनाना था घर की छत पे दो बेटों के लिए ना, कि यार दोनों की शादी कर दो, बाले हो गए तो कमरे के लिए पैसे नहीं थे, खैर वो इन्होंने कहीं उधार लिए, वो उधार भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस हो गया, कमरा बना दिया, वो उसमें बड़े वाले की शादी कर दी, वो तो आलिम बन रहा है अभी, तो उसका पहला साल है, उसके तो फारिग होने में 8 साल है, तो बहू खा रही है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। अब ये दूसरे वाले को भी ख्याल आया, पहले कह रहा था बेवा से करूंगा, पैसे है नहीं तो हो सकता है कोई बेवा कर ले, तो अब इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, अब रुख्सती का टाइम आ रहा है, रोखड़ा जेब में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं, जज्बे बहुत हैं। कल मैंने कहा बबे तेरे पास को देला तो है नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग के हम ही पान गुटके के पैसे दे देते हैं इसको थोड़े बहुत, वैसे एनडी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बन रहा है, ये ना समझे कि आप कोई गंदे नाले से उठा के लाए थे अब्बा इनको, ऐसा नहीं है, हाफिज है माशाल्लाह, लेकिन अभी तो इंजीनियर बन रहा है ना, वो तो जॉब कब मिलेगी, तालीम से फारिग कब होगा, मैं आपको मोटिवेशन के लिए ये सब बातें बता रहा हूं कि हम जो बोल रहे हैं अल्लाह का शुक्र है हमारे खानदान में जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं अप्लाई भी हो रहा है, ताकि लोग डरे नहीं, लोग ये ना बोलें कि यार मेंबर की बातें अलग होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें क्या होती हैं, अलग होती हैं। तभी मैं जो कह रहा हूं ना, मेरे इतने बच्चे लोग कह रहे हैं इतनी आमदन आ रही है, ओ भाई जब ये आमदन नहीं थी तो भी इतने ही बच्चे थे मेरे, दो चार का ही इजाफा हुआ है उसमें। और हमारी तो तीन शादियां 2011 से हैं, उस वक्त तो हमारी कोई सोर्स ऑफ इनकम बहुत थोड़ी थी। तो हम लोग नहीं देखते अल्लाह का शुक्र है कि पैसे हैं या नहीं, हम शादी भी टाइम पे करते हैं, बच्चे भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होते हैं, और अल्लाह ने जो रिस्क का वादा किया है अल्लाह भी उस वादे में पीछे नहीं हटता। और हम जो कैलकुलेटर लेके बैठे हुए लोग हैं उनको चेहरों पे देख रहे हैं कि बेरौनकी, घरों में बच्चों भी खत्म, उनके दीवारों को देख देख के दिल बहलाते हैं, घर में बेडरूम ज्यादा हैं, बेड भी बहुत ज्यादा हैं, रूम भी बहुत ज्यादा हैं, उनमें रहने के लिए अफराद नहीं है। तो अभी हमारे एक जानने वाले ने लैंड क्रूजर खरीदी है, हमने उनको बोला तुम्हारे दो बच्चे हैं उनके लिए लैंड क्रूजर की क्या जरूरत थी यार, ये तो रक्षे में भी आ जाते, क्या ख्याल इसमें बिठाएगा किसको तू, अकेला ही घूम रहा होगा। तो पहले अफराद तो हो भाई, फिर लाइफ को इंसान इंजॉय करता है। हमारा तो ऊंट जो है ना, अभी तक सारे बच्चे उस पर बैठे नहीं है, कुर्बानी के लिए जो ऊंट लिया था ना हमने ताकि बच्चे इंजॉय करें, बच्चे अभी इंजॉयमेंट चल रही है उनकी ही, सही है ना, बैठ के सवारियां कर रहे हैं उसके ऊपर। तो बच्चे होंगे तो घर में रौनक होगी मेरे भाई, अल्लाह पे एतमाद करो, तवक्कुल करिए। जो मैं बच्चों का ब्लॉग बना रहा हूं ना, अपनी बच्ची का भी ब्लॉग मैंने डाल दिया, अल्लाह की कसम मेरा मकसद कोई शो मारना नहीं होता, उसके लोगों को मोटिवेट करना होता है कि यार बच्चे घर में होंगे तो रौनक होगी, बच्चे घर में नहीं है तो रौनक नहीं होगा। हर साइज का बच्चा होना है, पुराना वाला जब बड़ा हो तो नया मार्केट में आ जाए, क्योंकि बच्चे तो घर में जब ही होंगे ना, जब होंगे, वरना तो बड़े हो जाते हैं ना वो। मैंने अपने किसी बड़े बच्चे का व्लॉग नहीं बनाया आज तक, वो बड़े हो गए, अब के बच्चे तो रहे नहीं है, अब तो बड़े हो गए, ठीक है ना। रौनक घर में किससे होती है, बड़ों से भी होती है, बच्चों से भी होती है। तो बच्चों का सारा मसला है, लोग कहते हैं बच्चे नहीं होने चाहिए, मैं तो व्लॉग में इसलिए दिखा रहा हूं लोगों को कि होने चाहिए, ये घर की क्या है, रौनक है, इससे बेहतर एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। उन घरों में ना ईद का पता चलता है, ना बकरीद का पता चलता है, ना शादी ब्याह का पता चलता है जिन घरों में बच्चे नहीं है। तो तुम गोरों को फॉलो मत करो, गोरा सिर्फ तरक्की को मानता है, साइंसी तरक्की नेचर से हट गया है वो, तभी इतनी तरक्की के बावजूद भी सुकून खत्म हो गया उस बेचारे का। पहले नेचुरल लाइफ है, नेचुरल लाइफ वही शादीशुदा हो, बच्चे हो, सासें हो, साले हो, पता नहीं साले का अल्लाह माफ फरमाए, ये साले का लफ्ज ऐसा बना दिया ना लोगों ने, ब्रदर इन निस्बती हो, ब्रदर इन लॉ हो, यूं कहना चाहिए। अच्छा खैर, तो क्या कह रहा था यार, मैं बात को समेटूं बस खत्म करूं, बहुत टाइम हो गया। अबे चंदा तो हुआ, हाँ तो मैं यह कर रहा था कि इसकी भी शादी होने वाली है, हम चंदा ना दें इसको, ये हो जाएगी। मैं इसे कह रहा था तू फर्नीचर कहां से लेगा बे, कल मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तू फर्नीचर कहां से लेगा, कह रहा यार अब तक सारे काम हो गए हैं, हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से देख लेंगे गरीब आबाद से जाके पुराना उठा लेंगे। तो मैंने कहा चलो उठा लेना पुराना, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे सर साहब मैंने थोड़े से कलिक्स को पैसे दिए बेचारे को, इसमें क्या शर्माना, इतना गरीब आदमी। मैंने कहा चल यार तेरा मामू हूं मैं, ये ले थोड़े थोड़े से मेरी तरफ से एक सोफा, ठीक है ना, एक सोफा मेरी तरफ से। तो कह रहा देखो हो गया ना इंतजाम, एक सोफे का तो हो गया ना, एक मिसाल दे रहा हूं मैं। लेकिन आप अल्लाह पे एतमाद करें, तवक्कुल करें सारे काम। तो अब्बा भी देखो इनका एतमाद कर रहा है, अब्बा की भी कोई बहुत ज्यादा आमदन नहीं है इनकी, लेकिन कह रहे हैं यार चलो खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं देख रहा हूं जो करोड़ों रुपए कमा रहा है उसका दिल अल्लाह ने क्या बनाया है, छोटा। बहू आएगी दो पराठे ज्यादा खा लेगी, भाई लोग क्या बातें करते हैं, भाई शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, मौली साहब क्या बातें कर रहे हो, एक औरत आएगी पहले ये होगा फिर इतनी यूं होगा फिर बच्चे का खर्चा फिर ऐसे जैसे दज्जाल निकल आया। भाई अगर इसको टेंशन बना लोगे तो बड़ी टेंशन है, हल्का ले लोगे तो कुछ भी नहीं है। भाई मर्द और औरत की एक दूसरे की अट्रैक्शन है, उधर रह रही है उधर से टन मारो इधर ले आओ उसको, वो भी तो खिला ही रहे ना लड़की के अब्बा, अपने कजन से हो रही है, कजन में ये भी फायदा है, कजन भाई वो भी खिला रहे हैं तो इधर ले आओ यार हम खिला देंगे, जो तुम खिला रहे हो क्या कर देंगे, तो ये आसान हो गया, तो खत्म हुई, इतनी सी बात है। तो इंसान इंसान का बच्चा बन जाता है और घर में सुकून आ जाएगा, उसके अफराद जितने घर में बढ़ते हैं एक रौनक होती है। अच्छा खैर, इसको मैंने बोला है कि तेरी शादी मेरे जिम्मे है, इसको मैंने बोल दिया तेरी शादी किसके जिम्मे है, मेरे जिम्मे। जब मैं अपनी शादी कर रहा था ना तो लोग मुझे कहते थे कि कहां से करोगे कहां से खिलाओगे, اب لوگوں کو دیکھو ہم نے کرتے رہے اللہ نے آج ہمیں اس قابل بنا دیا کہ دوسروں کی بھی شادی کرا دو, ٹھیک ہے نا. تو شو مارنا مقصد نہیں ہے, بار بار بتا رہا ہوں کہ توکل کس پہ کرو. ہم مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ہر جگہ کیلکولیٹر اور آم چھلکے سمیت کھانا یہ توکل کے کیا ہے, یہ خلاف ہے بھائی. کچھ کام کچھ گلوکوز اللہ بھی نیچے کرے گا, کچھ ڈاکٹر کریں گے, کچھ کون کرے گا, اللہ کرے گا. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. وہ علینا الا البلاغ.